उसके बहुमूल्य वचन का अध्ययन करने के लिए मैं थोड़ी देर पहले अंदर आया और मैं दो बाइबल को लिए हुए था और यहाँ एक महिला के साथ मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू था और मैंने उससे कहा यदि मैं उन दोनों में से प्रचार करता हूँ तो एक बहुत अच्छा मूल विषय होना चाहिए, लेकिन यह एक ग्रीक लेक्सिकॉन बाइबल है, इसलिए आज रात मैं इसमें से कुछ पढ़ना चाहता हूँ। यह वचन है, वचन अनुवाद के लिए मूल ग्रीक से अंग्रेजी में किया गया है और यह क्रम के साथ मेरे लिए बहुत मददगार रहा है और मैं इसमें से कुछ पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि अब हम इब्रानियों की इस किताब में से अध्ययन कर रहे हैं और हम अब वास्तविक गहराई के अर्थों पर आ रहे हैं। और मैंने कुछ मिनट पहले भाई नेविल को बताया, हम उस भाग में जा रहे हैं जहां लोग उनके सिर को खुजाते हैं और कहते हैं मैं ऐसा विश्वास नहीं करता, समझे? यही वो वर्ग है जिसमें हम जाने वाले हैं, यही है जहां हम इसे पसंद करते हैं। किसी सेवक ने मुझसे कहा, उसने कहा तो ठीक है, मैं सोचता हूँ कि वहाँ बहुत सिर खुजाने वाले होंगे। मैंने कहा यही है जिसे हम करना चाहते हैं। देखा, बाइबल का केवल एक ही अर्थ हो सकता है, इसके दो अर्थ नहीं हो सकते। और यदि बाइबल का एक भाग कुछ कहता है और बाइबल का दूसरा भाग कुछ और कहता है तो कुछ तो गलत है, समझे? इसी बात को सभी तरह से कहना है, लेकिन याद रखें, बाइबल का अध्ययन करते समय वो ज्ञानियों और बुद्धिमानों की आंखों से छिपा है और बालकों पर प्रकट होता है, क्योंकि यह एक आत्मिक किताब से है और यह कोई पश्चिमी किताब नहीं है, यह एक पूर्वी किताब है और केवल एक ही बात इसका अनुवाद कर सकती है और वो है पवित्र आत्मा। मैं जानता हूँ कि हम में से हर एक जन चाहता है कि पवित्र आत्मा हमें बता रहा है जो हम इसमें विश्वास करते हैं। तो ठीक है, अब यदि हर एक वचन बिल्कुल क्रम में एक समान है तो ये पवित्र आत्मा है। यदि यह व्यवस्थित नहीं होता है और यहाँ एक अंतर है और यहाँ पर अंतर है तो हमारे विश्वास में कुछ तो गड़बड़ है। और ओह, यह एक अद्भुत किताब है। अब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ऐसा करें, जब हम अध्ययन कर रहे हों, अब हमें आज सुबह व्योमिंग के लिए जल्दी निकलना होगा, प्रभु ने चाहा तो हमारे लिए प्रार्थना करना। और हम अगले सप्ताह भाई ग्राहम स्नेलिंग, यहाँ मौजूद हैं, मैंने उन्हें सुना है कुछ ही मिनट पहले उनकी घोषणा कर रहे थे और यह कलीसिया उनके बेदारी के साथ पूर्व सहयोग में है और हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें एक बहुत बड़ी बहुतायत महान बेदारी दे। भाई ग्राहम ने भाई के लिए एक बेदारी का आयोजन किया यहाँ ऊपर चार्ल्स टाउन में, भाई जूनियर कैश, और ये वहाँ ठीक 100 परिवर्तित लोगों पर था। मैं सोचता हूँ 84 लोग परिवर्तित हुए, तो उसके लिए हम परमेश्वर को स्तुति देते हैं और हम भरोसा करते हैं कि यहाँ इसके ऊपर 584 होंगे यहाँ इस स्थान पर। भाई ग्राहम ने आज मुझसे मुलाकात की और उन्होंने कहा, अब भाई बिल, मुझे यकीन है कि आप समझते होंगे कि मैं यहाँ आराधनालय के विरुद्ध कोई दूसरा काम शुरू करने के लिए नहीं हूँ, क्योंकि मैं आराधनालय का भाग हूँ। वो बस यहाँ है, वो अपने हृदय में महसूस करते हैं कि वो एक बेदारी को रखना चाहते हैं और प्रभु उन्हें करने के लिए अगुवाही कर रहा है और वो परिवर्तित लोगों को आमंत्रित करते हैं और उनकी एक कलीसिया है ताकि उन्हें ठीक वहाँ प्रवाहित करे। यहाँ एक कलीसिया भवन है, यदि आप अंदर आते हैं तो परिवर्तित हो जाओ। और यह हमारा कर्तव्य है, एक मसीही की नाई, हम जो कुछ भी उनके साथ समर्थन कर सकते हैं वो करें। और प्रभु भाई ग्राहम को आशीष दे और आप हर एक जन भाई ग्राहम की यहाँ होने वाली सभा में सादर आमंत्रित हैं। इस कलीसिया से पूर्ण अनुमति के साथ हम किसी भी तरह से उनकी सहायता करने के लिए पूर्ण सहयोग के साथ हैं, खोए हुए प्राणों के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए। प्रभु आपको आशीष दे भाई ग्राहम, आपको एक महान सभाएं दे। वो नहीं जानते कि वो कब समाप्त करेंगे, वो अभी शुरू कर रहे हैं। और सो भाई ग्राहम के साथ ऐसा मेरी तरह ही है, बहुत से उतार और चढ़ाव, इसी तरह से जीवन चलता है। ये आपके उतार से होकर गुजरने के बाद आपके चढ़ाव की सराहना करते हैं। यदि कोई मनुष्य गिरता है और वहाँ पड़ा रहता है तो वो कायर है। मुझे आत्मविश्वास मिलता है जब एक मनुष्य उठकर और फिर से कोशिश करेगा। यह सही बात है, मुझे यकीन है इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि मेरा क्या मतलब है। अब इसे मत भूलना इस आने वाले सप्ताह को। अब इब्रानियों की इस किताब में हम आज रात बुनियाद को नहीं लेंगे, अब अगले रविवार प्रभु ने चाहा तो भाई नेविल घोषणा करेंगे यहाँ पर भाई कॉक्स या उनमें से कोई, यदि हम अगले रविवार की सभा के लिए समय पर पहुँचते हैं तो उन्हें बताएंगे, वो इसकी घोषणा रेडियो पर करेंगे। और अब आप सब उनका रेडियो सुने और अपने सभी आस पड़ोस को सुनने के लिए आमंत्रित करें। मुझे उनके प्रचार और गायन को सुनकर वास्तव में आनंद मिलता है। नेविल चारों गुट के हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ बैठे हुए हैं। यदि मैंने ऐसा कहा और मेरे हृदय में इसका मतलब ऐसा नहीं था तो मैं एक ढोंगी हूँ। यह सही बात है, मुझे पश्चाताप करना होगा, लेकिन यह मेरा तात्पर्य है। और उनके जाने के बाद मैं उन्हें एक पूरी पुष्पांजलि देने की बजाय अभी एक छोटी सी गुलाब की कली देना पसंद करूंगा। एक बार मैं वहाँ द्वार से बाहर जा रहा था और एक स्त्री वहाँ आ रही थी और उसने कहा, भाई ब्रैनम, ओह, मैंने उस संदेश का बहुत आनंद लिया। मैंने कहा, धन्यवाद, इससे मुझे अच्छा महसूस हुआ। कोई और आया, कहा, भाई ब्रैनम, मैंने उस संदेश का आनंद लिया। मैंने कहा, धन्यवाद। वहाँ एक छोटा सा प्रचारक था यहाँ ऊपर से, जो देश के उत्तरी भाग में राज्य में है। उसने कहा, परमेश्वर धन्य हो, मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी इस तरह से बड़ाई करें। मैंने कहा, मैं तो चाहता हूँ। और मैंने कहा, मुझमें और आप में बस एक ही अंतर है, मैं इसके बारे में ईमानदार हूँ। यह सही बात है, हम सभी हमारे बारे में बोले गए अच्छे शब्द सुनना पसंद करते हैं, और मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में अच्छे शब्द कहना अच्छा है। और यदि आप चाहते हैं कि कोई आपके बारे में अच्छे शब्द कहे, तो किसी और के बारे में कुछ अच्छे शब्द कहें। इसे करने का यही तरीका है, तब आप हमेशा ही हर किसी के बारे में सबसे अच्छी बातें कहें, और यह पहिए के घुमाव को बेहतर बनाता है। अब इसमें अगले रविवार प्रभु ने चाहा तो मेरी राय में हम परमेश्वर के इन महान रहस्यों के अंदर और गहराई में चलते जा रहे हैं। हम मलकी सिदक के अंदर जा रहे हैं। वो कौन था, वो कहां से आया था, वो कहां चला गया, उसका क्या हुआ, और मलकी सिदक के बारे में सब कुछ। और अब पिछले बुधवार की रात भाई नेविल ने इसे लिया था, हमारे प्रभु यीशु की सर्वोच्च दैविकता और याजक पद का अंतिम अध्याय था, जो शुरुआत में प्रारंभ करता है। परमेश्वर विविध समयों और भिन्न भिन्न रीति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा पूर्व पिताओं से बात की। इस अंतिम दिन में हमसे अपने पुत्र मसीह यीशु के द्वारा बातें की है। फिर वह आगे बढ़ता है और बताने लगता है कि वो कौन था। पांचवें अध्याय के अंत में उसे पांचवें अध्याय में लाता है। फिर छठवें अध्याय से शुरू करते हुए हमने इसे आज सुबह हमारे विषय में लिया। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। कितने लोगों ने सिद्धता पर संदेश का आनंद लिया। आओ हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। आज सुबह यही हमारा संदेश था इब्रानियों के छठवें अध्याय में। अब हम बस उस स्थान पर आ रहे हैं जहां से हम उस मुख्य भाग को लेना आरंभ करेंगे। ओह, हम सब इन बातों पर सहमत हो सकते हैं, मसीह की दैविकता पर और वो परमेश्वर का पुत्र होने पर, और किस तरह से वो परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर के साथ था और वो परमेश्वर में था और परमेश्वर उसमें इत्यादि। हम सब उस पर सहमत हैं। लेकिन अब यहाँ से आगे मैं नहीं जानता कि हम कैसे सहमत होंगे। तो जो भी है, हर एक कुछ रातों में हम आपको मौका देंगे कि एक छोटा सा नोट या कुछ शब्द लिखे और मुझे बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद मैं सवालों के जवाब को दूंगा, और यदि मैं उन्हें नहीं ले सकता हूं तो मैं कहूंगा, भाई नेविल, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मैं कहूंगा, वहां है वो, उन्हें उसका उत्तर देने दो। फिर जब वो शब्द कोश से पढ़ेंगे तो यूनानी को लेंगे। मैं सोचता हूं कि मेरे लिए भी ऐसा करने का समय है। लेकिन अब यदि हम आगे जाते हैं और वास्तव में ईमानदार बने और सचमुच में एक उद्देश्य के लिए आए, वो है सीखना। मैं भी सीखना चाहता हूँ, और बाइबल लिखी हुई है, कहती है ऐसा है, वचनों का कोई निजी अनुवाद नहीं है। इसका अर्थ है कि अवश्य ही वचनों का अनुवाद करना चाहिए। देखा, प्रत्येक वचन को अवश्य ही दूसरे वचन का अनुवाद करना चाहिए, पूरी तरह से बाइबल में से होते हुए, ताकि इसे एक महान बात बनाए, क्योंकि परमेश्वर बदल नहीं सकता है, क्योंकि वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। अब छोड़ते हुए इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। मुझे पसंद है जो पौलुस उन बातों को कह रहा है। पौलुस कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो एक ही स्थान पर बहुत देर तक रहना पसंद करता हो। उसे आगे बढ़ना पसंद था और गहराई में। एक बार वचन में उसने कहा, मैं उन बातों को भूल रहा हूँ जो बीत चुकी हैं। मैं ऊंची बुलावट के निशाने की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। देखा, वो आगे बढ़ता जा रहा था। यहाँ उसने कहा, अब मसीह के सिद्धांत की शिक्षा की बातों को भूलकर वो कौन था, वो क्या था, आओ हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े। अब हम पहले हम ये देखना चाहते थे, क्या हम सिद्ध हो सकते हैं? और हमने आज सुबह वचन में पाया मत्ती 5:28 कि यीशु ने कहा कि हम जैसे परमेश्वर सिद्ध है वैसे ही हमें सिद्ध होना है, या तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे। तब हमने पाया कि हम हर एक जन पाप में जन्मे, अधर्म में आकार लिया, झूठ बोलते हुए संसार में आए और हमारे बारे में एक भी अच्छी चीज नहीं दिखाई देती, तो हम भला कैसे कभी सिद्ध हो सकते हैं? अब उसके बाद यहाँ है जो हम पाते हैं, फिर पढ़ते हुए वचन को वचन के साथ लेते हुए कि यीशु उस एक बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए उसकी कलीसिया को सिद्ध करता है। वो तब हम मसीह में से होते हुए सिद्ध होते हैं और हम मसीह में से होते हुए न्याय से आजाद हैं। हम मसीह में से होते हुए कभी भी नहीं मरेंगे। हम मृत्यु को खो चुके हैं और मसीह में से होते हुए जीवन को पाया है। ना ही किसी कलीसिया में से होते हुए, ना ही किसी संप्रदाय में से होते हुए, ना किसी चमत्कार में से होते हुए, न किसी अन्य जुबान में से होते हुए, ना ही चिल्लाने के जरिए से, ना ही कांपने के जरिए से, ना ही आत्मा में नाचने से, लेकिन अनुग्रह में से होते हुए। परमेश्वर उसे बुलाता है जिसे वो चाहेगा और यह सब चुनाव के द्वारा है। हम ये पाते हैं, हम देखते हैं कि यह वो नहीं है जो बचना चाहता है, ना ही वो जो चाहता है और ना वो जो दौड़ता है। यह तो परमेश्वर है जो दया को दिखाता है और कोई भी मनुष्य यीशु के पास नहीं आ सकता जब तक कि परमेश्वर उसे पहले न खींचे। तो वैसे भी आपको इससे क्या लेना देना है? आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आप कुल मिलाकर तस्वीर से बाहर हैं। हमने देखा है कि मनुष्य कभी भी परमेश्वर की खोज नहीं करता है। यह तो परमेश्वर है जो मनुष्य के पीछे जाता है। और तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ही अनंत जीवन का एकमात्र स्त्रोत्र है। हम देखते हैं कि जो कुछ भी अनंत है उसका कोई आदि या अंत नहीं होता है। इसलिए हम पाते हैं कि नरक का आरंभ था और इसका एक अंत है, और वहाँ केवल कोई कभी नहीं कह सकता कि नरक सदा के लिए होता है। बहुत अधिक समय, हाँ बहुत अधिक समय के लिए, लेकिन अनंत नहीं होता है। बहुत अधिक समय, समय की एक अवधि होता है। बाइबल कहती है बहुत अधिक समय और बहुत अधिक समय के लिए। और आप इसे देखें और पता लगाएं कि क्या सदा के लिए इसका मतलब समय की एक अवधि नहीं है। योना ने कहा कि वो वेल मछली के पेट में बहुत अधिक समय के लिए था, और बहुत से अन्य वचन बहुत अधिक समय के लिए का मतलब समय की एक अवधि बताते हैं। लेकिन अनंत ये सदा के लिए होता है। वो सदा और सदा के लिए और सदा के लिए और सदा के लिए और सदा के लिए है। यह अनंत है, और हम पाते हैं कि नरक अनंत नहीं होता है, लेकिन यह बहुत अधिक समय के लिए है। और वो कारण, अब आपको उन शब्दों को ध्यान देना होगा। यदि आप नहीं देते हैं तो आप उलझ जाते हैं। अब याद रहे, जिन बातों का कोई आदि नहीं था, कोई अंत नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा, वह जो मेरे वचनों को सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास जीवन है अधिक समय के लिए। क्या यह सही दिखाई पड़ता है? नहीं, उसके पास अनंत जीवन है। और अनंत शब्द परमेश्वर है। वो शब्द यहाँ यह ठीक यूनानी शब्द कोश में है, जोई परमेश्वर का जीवन आप में, और आप उतने ही अनंत हो जितना परमेश्वर अनंत है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर है। आपका पुराना स्वभाव मर गया जो संसार का स्वभाव है, और आप एक नई सृष्टि बन गए हो, और आपकी इच्छाएं, वो पुराना जीवन जिसका आरंभ तब हुआ जब परमेश्वर ने आपके नथुनों में सांस फूंकी। जब आप जन्मे थे तो शारीरिक प्रकृति का जीवन मर गया और इसका एक आरंभ था और इसका अंत था और ये मर गया और हमेशा के लिए मिटा दिया गया वो पुराना स्वभाव और परमेश्वर नए स्वभाव के साथ आया। फिर प्रेम आनंद शांति सहनशीलता दयालुता शांति धीरज और नम्रता और कृपा ये अंदर आए और द्वेष और क्रोध और घृणा और प्रतिस्पर्धा बैर और उन सभी चीजों की जगह को ले लिया। इसने इसकी जगह को ले लिया। जब आप मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर जाते हैं क्या आपने अब नजदीक से समझ लिया? तो सुनना अनंत जीवन का केवल एक ही रूप है इसे ढूंढें, अर्थात केवल परमेश्वर के पास ही अनंत जीवन है। बाइबल ऐसा कहता है केवल परमेश्वर के पास ही अनंत जीवन है और यदि एक मनुष्य को सदा के लिए नरक में पीड़ा सहना है तो उसके पास परमेश्वर अनंतता होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ अब याद रखना मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई जलता हुआ नरक नहीं है। वहाँ एक जलता हुआ नरक आग और गंधक है जहाँ वो कीड़ा आग नहीं भूसती है और कीड़ा कभी नहीं मरता। उस आग और गंधक का एक दंड यह हो सकता है 100 अरब वर्षों तक चले लेकिन इसका एक अंत होना ही है क्योंकि नरक शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया था और यह हर एक चीज जो स्वयं वही परमेश्वर है जो आरंभ में था हर एक चीज परमेश्वर से आती है। जब वही आत्मा केवल प्रेम की आत्मा को ले लो वो परमेश्वर का महान झरना था शुद्ध बिना मिलावट का उसमें से ये दूषित हुए प्रेम में आ गया। उसके बाद यह मानव प्रेम में आया उसके बाद यह कामुक प्रेम में आया उसके बाद यह दूसरे प्रेमों में आ गया प्रेमों और प्रेमों में और बस आगे इतना दूषित होता चला गया जब तक यह बस गंदगी नहीं बन गया। लेकिन उन सभी चीजों की शुरुआत हुई थी और किसी दिन यह सीधे मूल पर वापस आ जाएगा। यह अनंत है जहाँ वासना मानव प्रेम भावुक प्रेम उन सभी प्रेमों को समाप्त होना है विश्वास के ये सभी बनावटी विश्वास को समाप्त होना है। वहाँ एक ही सच्चा विश्वास है अन्य सभी को समाप्त होना है। वे इस सच्चे झरने से दूषित हुई बातें हैं तो इसलिए नरक पीड़ा में जाना अनंत नहीं है। पाप के वजह से पीड़ा आई थी और पाप ने पीड़ा का परिचय कराया और जब पाप समाप्त हो जाता है तो पीड़ा को भी समाप्त होना होगा और वहाँ एक समय आएगा जब पापी लोग जिसने कभी भी मसीह को स्वीकार नहीं किया उन्हें दंड मिलने के बाद हो सकता है 100 अरब वर्ष के लिए हो मैं नहीं जानता हो सकता है 100 मिलियन अरब वर्ष के लिए हो मैं नहीं कह सकता लेकिन इसे कभी न कभी तो खत्म होना ही है क्योंकि यह अनंत नहीं है। अब हम सिद्धता की ओर बढ़ने जा रहे हैं। अब सुनना जब हम संदेश में प्रवेश करते हैं ना ही मरे हुए कामों से मन फिराने की नींव फिर से न डालें और परमेश्वर के प्रति विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अनंत न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। अब सुनना हमारे पास दो अब हमारे पास यहाँ एक तस्वीर है अब ठीक यहाँ पर है जहाँ हमें कुछ बड़ी असहमति मिलने वाली है। अब आपको देखना है कि तस्वीर कहाँ पर है। पौलुस यहाँ व्यवस्था को अनुग्रह से अलग करने का प्रयास कर रहा है। हमारे पास दो तस्वीर है एक है शारीरिक एक है आत्मिक और पौलुस कोशिश कर रहा है कि दो के बीच विचलित करे ताकि यहूदियों को इसे दिखा सके। ये पत्री इब्रानियों के लिए है और सारे इब्रानी पुराने नियम की प्रतिछाया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नए नियम के नमूने को लेते हुए। तो आपके पास यहाँ विचार करने के तहत दो तस्वीरें हैं। अब ध्यान से सुनना जब हम पढ़ते हैं अब उसने कहा मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं अब हमने आज सुबह इसे लिया कि हम कैसे सिद्ध होते हैं। सिद्ध होना पूरी तरह से बिना दाग और निर्दोष, हम पर एक भी पाप नहीं। क्या आप अभिलाषा से ऊपर हैं? कभी नहीं। क्या आप हर रोज पाप करते हैं? जी हाँ श्रीमान, लेकिन फिर भी हम सिद्ध हैं क्योंकि हम उसमें हैं, और परमेश्वर हमारा अब भी और न्याय नहीं कर सकता, किसी से भी नहीं, धर्मी का नहीं हो सकता। उसने पहले से उसमें हमारा न्याय किया है। जब उसने मसीह का न्याय किया तो उसने मेरा न्याय किया, उसने आपका न्याय किया, और वो फिर से मेरा न्याय नहीं कर सकता क्योंकि उसने मेरे न्याय को ले लिया यदि मुझे छुड़ाया गया है तो। और मेरे पास एक टिकट या रसीद है यह दिखाने के लिए कि मैंने गिरवी की दुकान से अपनी घड़ी को छुड़ा लिया है। इसे एक बार किसी को तो गिरवी की दुकान में वापस लेने की कोशिश करने दो, जबकि मेरे पास रसीद है, मैंने इसे छुड़ा लिया है। और यदि शैतान मुझ पर दंड लगाने की कोशिश करेगा तो मेरे पास एक टिकट या रसीद है जो मुझे दिखाती है कि मुझे छुड़ाया गया है। जी हाँ श्रीमान, अब कोई न्याय नहीं। वो जो मेरे वचनों को सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है, और वो कभी भी न्याय के लिए नहीं आएगा लेकिन मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका है। यही मेरी टिकट या रसीद है, उसने प्रतिज्ञा को दिया है। अब यहाँ तस्वीर है, न मरे हुए कामों से पश्चाताप करने की नींव को फिर से न डालें, और परमेश्वर के प्रति विश्वास, बपतिस्मे की शिक्षा और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अनंत न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। अब याद रखना, क्या आपने देखा कि उस शब्द को फिर से इस्तेमाल किया गया है? हमने आज सुबह इसका उपयोग किया, अनंत न्याय। जब परमेश्वर एक बार बोलता है तो यह अनंतता के लिए होता है, इसे जरा भी बदला नहीं जा सकता। इसलिए न्याय अनंत है, यह हमेशा ही न्याय होता है, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसी भी पीढ़ी में क्यों न रह रहे हों। एक पीढ़ी जीवित रहेगी और एक व्यवस्था जीवित रहेगी, और यह हमेशा के लिए है या हर किसी समय के लिए है, और ये और वो। लेकिन परमेश्वर का न्याय अब भी अनंत है, उसे होना ही है क्योंकि उसने वचन को बोला है। जब परमेश्वर एक वचन को बोलता है तो उसे अनंतता के लिए होना है, ये सही बात है। अब मैं आपके लिए इसे यूनानी में से पढ़ता हूँ, सुनना कि यह किस तरह से बताता है।
Leaving the principles of the doctrines of Christ,
इसलिए मसीह के सिद्धांतों की शिक्षा को बातों को छोड़ते हुए वो एक प्राचीनता हमें आगे की ओर जोर देना चाहिए। अब मैं इसे नहीं पढ़ सकता, ये धुंधला हो गया है, और ना ही फिर से सीख यहाँ हम हैं।
Not laying again the form of reformation,
ना ही फिर से मृत्यु का कारण बनने वाले कार्यों से पुनः सुधार की शिक्षा को रखते हुए। अब यह शब्दकोश बिल्कुल पूरी तरह से किसी का अनुवाद नहीं है, यह बस यूनानी शब्द है क्योंकि अंग्रेजी जो कहती है, और यह कहती है अब हम नहीं चाहते, यहाँ सुनना, देखो,
नॉट लेइंग डाउन फाउंडेशंस
ना ही फिर से मृत्यु का कारण बनने वाले कार्यों से पुनः सुधार की शिक्षा को रखते हुए। अब यदि आपके मन में यह बात आएगी कि वो यहाँ बोल रहा है कि सुधार की शिक्षा मृत्यु का कारण बनती है, पौलुस ने कहा सिद्धांतों को छोड़ते हुए सिद्धता की ओर बढ़ें, ना ही मरे हुए कामों से पश्चाताप करने की फिर से नींव को रखते हुए, और परमेश्वर के प्रति विश्वास करने, बपतिस्मा की शिक्षा, हाथों को रखना, मरीवों का पुनरुत्थान, अनंत न्याय, सुधार की शिक्षा मृत्यु का कारण बनती है, जो सही शब्द है। वास्तव में यही है जो पौलुस ने लिखा है। देखा कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब ये सारी बातें, जैसे कि बपतिस्मे, कोई एक पीठ की तरह बपतिस्मा लेता है, एक आगे की तरफ होकर, एक पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, एक यीशु के नाम पर, एक इस तरह से और उस तरह से, और बपतिस्मे की ये सभी अलग अलग छोटी छोटी चीजें, और हाथों को रखने के विषय में, परमेश्वर धन्य हो, मुझे हाथों को रखने का दान मिला है, हालेलुया, आप इसे इस तरह से ले सकते हैं, हालेलुया, उस सब को एक तरफ रख दें क्योंकि वो मरे हुए कार्य हैं, ये सुधारक सुधार कर रहे हैं। देखा, वो दूसरे वर्ग की बात कर रहा है। अब उसने कहा, आइए इससे दूर हो जाएं और सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। आपको ये समझ गया? और कलीसिया अब भी उन बातों में पीछे लगी हुई है। यही है वे जो करने की कोशिश कर रहे थे। आरंभिक इब्रानी कलीसिया ये कहने का प्रयास कर रही थी, तो ठीक है, मेरा डुबाने के द्वारा बपतिस्मा हुआ था और मुझे ये मिला था और ये सब चीजें मिली। उसने कहा, अब उस सब को एक तरफ रख दें, इसे पीछे छोड़ते हुए। लेकिन अब क्या उसने कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? अब सुनना उसने इस बारे में क्या कहा। और हम ये करेंगे परमेश्वर अनुमति दे, और मूल ने उसी बात को कहा, और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। देखो, और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। बपतिस्मे, हाथ को रखना और इत्यादि, लेकिन यह सिद्धता नहीं है, यह तो केवल शारीरिक सुधार है। और यही है जहाँ पर कलीसियाएं आज छोड़ देती हैं, उस शारीरिक सुधार पर बनी हुई है। उनमें से एक कहता है, ओ पानी, बपतिस्मा शब्द का अर्थ ऐसा है और इसका अर्थ वैसा है, और उन्होंने संगठन को स्थापित किया है, और एक छिड़काव करता है, दूसरा एक जल को उंडेलता है, दूसरा मुंह को आगे की ओर करके बपतिस्मा देता है, दूसरा एक पीठ की तरफ करके, और वे सारी चीजें। उनमें से कुछ लोग बीमारों के लिए हाथ रखते हैं, कोई प्रेरित बना रहा है, और कोई भविष्यवक्ता और इत्यादि बना रहा है। हाथ को रखने के द्वारा और मरे हुए में से जी उठने का प्रचार करते हैं, और जो कि ठीक बात है, और मसीह की सर्वोच्च दैविकता, ये सब ठीक है। लेकिन उसने कहा, ये सभी औपचारिक सुधार हैं, हम बस सुधार कर रहे हैं। अब आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ें। आपने तस्वीर को समझा? अब देखो, यहाँ पर अब गहरा भाग आता है, क्योंकि ये उनके लिए असंभव है जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा की भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं, तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। अब मैं जानता हूँ कि अभी आप जो नियमवादी हैं, आपके मन में क्या है, लेकिन आप गलत हैं। देखा, तो ठीक है, मैं इस पर खड़ा हूँ, और बाइबल इसकी पुष्टि करती है कि यदि परमेश्वर कभी किसी मनुष्य को बचाता है, तो वो समय और अनंतता के लिए बच गया है। आप इसे कुछ भी और नहीं कह सकते। ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ कट्टरपंथी मेरे पास आए और कहा, मैं आपसे एक बात पर पूछता हूँ प्रचारक ब्रैनम, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। आपने कहा, यदि एक मनुष्य बच जाता है तो वो कभी नाश नहीं हो सकता। मैंने कहा, यही है जो परमेश्वर ने कहा। उसने कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। शाउल एक भविष्यवक्ता था और उसने भविष्यवाणी की, और आप जानते हैं कि वो परमेश्वर का अभिषिक्त था। बाइबल ने कहा कि वो था, और उसने आत्महत्या कर ली और वो नाश हो गया। मैंने कहा, वो था। मैंने कहा, बाइबल घोषित करती है कि वो बचाया गया था। परमेश्वर का शत्रु होने के बाद वो तब भी बचा लिया गया था। बाइबल ने कहा कि वो बच गया था, और आखिर उसने आत्महत्या नहीं की। एक फिलिस्तीनी ने उसको मार दिया, और दाऊद ने उस फिलिस्तीनी को उसे मार डालने के लिए घात किया। वो उसकी तलवार पर गिर गया, उसके भाले, तलवार, लेकिन उसने ऐसा किया, इसने उसे नहीं मारा, और एक फिलिस्तीनी ने उसे मार डाला। और जब शाऊल जादूगरनी के पास गया और उसने शमूएल की आत्मा को पुकारा, क्योंकि उसने महिमा में प्रवेश नहीं किया था, वो बैलों और बकरियों के बहाए गए लहू के नीचे स्वर्ग लोग में था, जो पाप को दूर नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास एक प्रतीक्षा का स्थान होना था, जिसे स्वर्ग लोग कहा जाता है, जब तक कि वो अंदर प्रवेश नहीं कर लेता। यही है जहां आप कैथोलिक लोग उलझ जाते हैं, समझे? अब वहाँ कोई और स्वर्ग लोग नहीं है, हम सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। और जब एंडोर की जादूगरनी ने शमूएल की आत्मा को पुकारा, तो वो वहाँ खड़ा था, और वो मुंह के बल गिर पड़ी और बोली, आपने मुझे क्यों भरमाया? और ना ही केवल शाऊल वहाँ खड़ा था, मेरा मतलब है शमूएल अपने भविष्यवक्ता के वस्त्र में, वो अभी भी एक भविष्यवक्ता था। उसने कहा, तूने मुझे मेरे विश्राम से बाहर क्यों बुलाया? कहा, यह देखते हुए कि तू परमेश्वर की शत्रु बन गई है। उसने कहा, तो ठीक है, उरीम अब और मुझसे नहीं बोलेगा। भविष्यवक्ता मेरे लिए अब और अधिक भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ना ही मेरे पास कोई सपना हो सकता है। तो ठीक है, शमूएल ने कहा, तुम परमेश्वर के शत्रु बन गए हो, लेकिन कल लड़ाई दूसरी तरफ हो जाएगी और तुम कल मर जाओगे, और कल रात इस समय तक तुम मेरे साथ रहोगे। यदि शाऊल नष्ट हुआ था तो शमूएल भी, वे दोनों एक साथ थे। निश्चित रूप से बाइबल ने ऐसा कहा। अब आप पूरी तरह अन्य जुबान में बोलते हुए, चिल्लाते हुए, झटके देते हुए भावना में डूब सकते हैं, हिलते डुलते गलियारे से ऊपर नीचे दौड़ सकते हैं, इसके विरोध में कुछ भी नहीं, लेकिन आप अपने आप को यह विश्वास देने को लगा सकते हैं कि आप बचाए गए हैं, जबकि आप नहीं बचाए गए हैं, आप नहीं बचाए गए हैं। आपका जीवन प्रमाणित करेगा कि आप क्या हैं। यीशु ने कहा कि ऐसा होगा, उनके फलों से तुम उन्हें जानोगे। आपका जीवन साबित करेगा कि आप बच गए हैं या नहीं। यदि आप कभी अपना मुंह नहीं खोलते हैं तो भी ये साबित करेगा कि आप क्या हैं। लेकिन ये सब काम और भावना और कलीसिया से जुड़ना और मुझे यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया गया, हालेलुया, मैं जानता हूँ कि मैंने पा लिया है, इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। मुझे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया गया है, तीन बार आगे की ओर मुंह करके, मैंने इसे पा लिया है, इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। पौलुस ने कहा, आओ अब हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। हम सिद्धता के बारे में बात कर रहे हैं, और यदि हम इस पर आगे जाएंगे तो आप पाएंगे सिद्ध चुने हुए होते हैं। मैं इसे कुछ ही मिनटों में बाइबल के द्वारा आपके सामने साबित कर दूंगा। यह चुने हुए लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने जगत की नींव डालने से पहले उनमें से हर एक को देखा था, और उसने यीशु को उन लोगों को छुड़ाने के लिए भेजा, न ही पूरी दुनिया को वो चाहता था, लेकिन उसे उनके लिए रास्ते को बनाना था, और एक ही तरीके से वो कर सकता था, वो था मसीह को भेजना, जिससे कि वो आ सके, जो हमारे पापों की प्रायश्चितता हो, जिससे कि वे जो चुने हुए हैं वो उन्हें महिमा में उसके पास ला सके। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर अपने कार्य स्थान को इतने ढीले ढाले तरह से चला रहा है, जैसे कि कहते हैं, तो ठीक है, हो सकता है कि कोई मेरे बारे में बहुत बुरा सोचेगा, हो सकता है कि वे आकर और बच जाएं। परमेश्वर को आपसे कुछ भी नहीं करने के लिए विनती करने की आवश्यकता नहीं है। कोई विनती करने की आवश्यकता आपको है, परमेश्वर को नहीं। और तब मसीह उन लोगों को बचाने के लिए मरा जिन्हें परमेश्वर ने पूर्व ज्ञान के द्वारा बिना किसी दाग या झुर्री के उस ओर उससे मिलने के लिए चुना है। दुनिया की नींव डालने से पहले उसने आपको महिमा में देखा। यही है जो बाइबल ने कहा, एफिसियो पहला अध्याय, पांचवा अध्याय, पहला पद, परमेश्वर ने पूर्व ज्ञान के द्वारा पहले से ठहराया। अब यदि परमेश्वर ने ऐसा किया, हमें जगत की नींव डालने से पहले ठहराया, और हम में से हर एक को जगत की नींव डालने से पहले नाम के द्वारा जानता है, और हमें अनंत जीवन के लिए चुन लिया, और हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को भेजा, जिसने 6000 वर्ष पहले उसने हमें देखा, जिससे कि हम महिमा में उसकी स्तुति में प्रकट हो सके। आप भला कभी कैसे नाश हो सकते हैं? अब यदि आप बच गए हैं तो आप बच गए हैं। यदि परमेश्वर आज रात आपको बचाता है, यह जानते हुए कि वो आज से 10 वर्ष बाद आपको खोने जा रहा है, तो वो अपने ही उद्देश्य को विफल कर रहा है। वो चिरस्थायी, सर्वशक्तिमान, अनंत, सनातन ज्ञान परमेश्वर यह जानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि जाने आप डटे रहेंगे या आप नहीं डटे रहेंगे। फिर जब वो आपको बचाता है और कहता है, तो ठीक है, मैं उसे एक परीक्षा दूंगा और देखता हूँ कि वो क्या करेगा, तब तो वो आदि से अंत को नहीं जानता। परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है। आप इसके बारे में कभी भी चिंता न करें, यह तो आप और मैं इसके दौरान लड़खड़ा रहे हैं। परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है, और वो जानता था कि हम क्या हम डटे रहेंगे या हम क्या करेंगे। अब बाइबल ने कहा कि एसाव और याकूब, इससे पहले किसी भी बालक का जन्म होता था, परमेश्वर ने कहा, मैं एक से प्रेम करता हूँ और दूसरे एक से घृणा करता हूँ। इससे पहले कि उन्होंने अपनी पहली सांस भी ली, जिससे कि उसका चुना जाना सच हो सके। अब्राहम कौन था? हम कुछ ही मिनटों में उसे लेंगे यहाँ आगे। वह था कौन जिसे परमेश्वर को बुलाना चाहिए? उसे बिना किसी बात के बचाता है। परमेश्वर मनुष्य से वाचा बांधता है, मनुष्य उसकी वाचा को तोड़ता है, लेकिन परमेश्वर ने यह वाचा अपने ही साथ बांधी और उसने अपनी ही शपथ खाई कि मनुष्य का इससे कोई लेना देना नहीं है। यह परमेश्वर का अपना पूर्व ज्ञान है, उसने इसे किसी भी तरह से कर दिया। अब आप कहते हैं तो ठीक है भाई ब्रैनम, यदि मैं एक मसीही बन जाता हूँ मैं तब कुछ भी कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। बिल्कुल, यदि आप एक मसीही हैं, आप कुछ भी करें जो आप करना चाहते हैं, और मैं गारंटी देता हूँ आपके पास गलत करने की कोई इच्छा नहीं होगी। आप कुछ भी करें, मैंने हमेशा वही किया है जो मैं करना चाहता था। और यदि मैं प्रभु की सेवा करता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मैं नरक में चला जाऊंगा, तो मैं उसकी सही सेवा नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं अपनी पत्नी के प्रति सच्चा रहता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि वो मुझे तलाक दे देगी, तो मैं बिल्कुल भी अच्छा पति नहीं हूँ। लेकिन मैं उसे बिना किसी कारण के दुख नहीं पहुँचाता हूँ क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। ऐसा ही मसीह के साथ होता है जब एक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा से जन्म लेता है, इसलिए नहीं कि उसने चिल्लाया, अन्य जुबान में बोला या कुछ भावना में आया, लेकिन उसके हृदय में प्रेम आया और उसने संसार के स्थान को ले लिया। मैं आपको बताता हूँ, वो उससे प्रेम करता है, वो हर दिन उसके साथ चलता है। आपको उसे ये बताने की आवश्यकता नहीं है ऐसा करना गलत है या वैसा या इत्यादि। वो जानता है कि यह गलत है और वो चलता है। वो परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ अनुग्रह का एक ठहराया गया उत्पादन है। बिल्कुल, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है ये उनके लिए असंभव है जो स्वर्गीय बुलावट के भागीदार हो गए हैं। अब हम कभी कभी विश्वास करते हैं कि वो एक ऐसा मनुष्य था जिसने एक बार ज्योति पाई थी और फिर से गिर गया, लेकिन बाइबल इसे इस तरह से नहीं बताती है। एक मनुष्य के लिए पूरी तरह से असंभव है। वो यहाँ कहता है कि जिसने पवित्र आत्मा को पाया है कि वो कभी गिर जाए। अब इसे पढ़ें और देखें कि क्या ये सही नहीं है। यहाँ देखें, शब्दों को लें, संपूर्ण शब्द और बातों को, मेरा मतलब संदर्भ को लें। अब वो इस बारे में बात करना आरंभ करता है, ये क्या है, आओ हम शुद्धता की ओर आगे बढ़े। अब उसने कहा ना ही शारीरिक शिक्षाओं और बपतिस्मा और सुधारों और इत्यादि की यहाँ नींव को रखते हुए। अब ऐसा न करें, अब आओ शुद्धता की ओर आगे बढ़े। वो विषय शुद्धता है और सिद्धता मसीह के द्वारा आती है। और हम मसीह में किस तरह से आए? कलीसिया में जुड़ने के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा। हम सब ने उस देह में बपतिस्मा लिया है, ना ही एक अन्य जुबान में बोलने के द्वारा, किसी एक से हाथ मिलाने के द्वारा, एक पानी में बपतिस्मा लेने से, लेकिन एक आत्मा के द्वारा हमने एक देह में बपतिस्मा लिया है। आपने इसे समझ लिया? यही सिद्धता है। और जब आप उसमें आते हैं तो आप मसीह में होते हो और आपके लिए संसार मरा हुआ होता है, और आप हर एक दिन मेमने के साथ चलते हो और आपके कदम परमेश्वर की ओर से ठहराए जाते हैं कि क्या करना है। ओ मुसीबतें और परीक्षाएं जिनमें से होकर हम जाते हैं। आप कहते हैं क्या आपके पास परीक्षाएं हैं? जी हाँ श्रीमान। क्या है? अनुग्रह वो है जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया, कार्य वो है जो मैं परमेश्वर के लिए करता हूँ। अब वे इसमें से एक सिद्धांत बनाएंगे। वे सोचते हैं कि काम वही है जो आपके गुणों को जीतता है। यदि ऐसा है तो ये मुफ्त का दान नहीं है। अनुग्रह वही है जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। अनुग्रह के द्वारा आप बचाए गए हैं, और कार्य वो है जो आप उस अनुग्रह की प्रशंसा में करते हैं जो उसने आप पर दिखाया है। और यदि आप उससे प्रेम रखते हो तो आप प्रभु के काम करना पसंद करते हो, निश्चित रूप से, क्योंकि तब आप उससे प्रेम करते हैं। मेडा ब्रॉय को मेरी पत्नी के रूप में स्वीकार करना उसके लिए यही प्रेम था। वह प्रशंसा में क्या करती है? वो एक अच्छी महिला है, घर पर रहती है, बच्चों की देखभाल करती है और एक अच्छा सच्चा जीवन जीती है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने विवाह नहीं किया है, हम विवाहित हैं, लेकिन वो प्रशंसा में ऐसा करती है। यदि वो हर रोज शहर में दौड़कर जाती है और हर एक सस्ती दुकान में जाती है और रास्तों पर यहाँ वहाँ से लेती है और कभी भी बर्तन नहीं धोती है या कुछ और नहीं करती, हम फिर भी विवाहित हैं। बिल्कुल, जब मैंने अपने विवाह की प्रतिज्ञा ली तो इससे बात खत्म हो जाती है। वो मेरी पत्नी है, जब तक हम में जीवन है वो मेरी पत्नी है, ये उसकी विवाह की प्रतिज्ञा है। लेकिन उसके लिए वो क्या प्रशंसा करती है, वो घर पर रहती है और बच्चों की देखभाल करती है और एक सच्ची पत्नी बनने की कोशिश करती है। मैं बाहर जा सकता हूँ और हर समय बाहर रह सकता हूँ, बस देश भर में घूमता फिरता रह सकता हूँ और भले ही पत्नी को आधा भूखा रहने दूँ या ऐसा ही कुछ, बच्चों को बिना कुछ खाए जाने दूँ, हम फिर भी विवाहित हैं। यदि वो मुझे तलाक भी देती है तो भी मैं विवाहित हूँ। जब तक मेरे शरीर में जीवन है मैंने उस प्रतिज्ञा को लिया, मरते दम तक हम अलग ना होंगे। यह सही बात है, हम अब भी विवाहित हैं। लेकिन मगर मैं एक पति की नाई एक बेकार का बहाना बनाता हूँ, वो एक पत्नी के रूप में एक बेकार का बहाना बनाती है। तो यदि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो भी हम एक साथ बने रहते हैं और बोझ को एक साथ खींचते हैं। इसी तरह से परमेश्वर और उसकी कलीसिया है। जब आप परमेश्वर के राज्य में जन्म लेते हैं तो आपके पास उतार और चढ़ाव होंगे, सच है, लेकिन आप अब भी एक मसीही हैं। आपने अब भी परमेश्वर की आत्मा से जन्म लिया है। परमेश्वर को हो सकता है आपको धरती पर से जल्दी उठाना पड़े। यह उन लोगों के लिए असंभव है जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और उन्होंने स्वाद को चखा है स्वर्गीय दान का। यदि वे कभी भटक जाएं, तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर से नया बनाना अनुहोना है। अब मैं जानता हूं कि आप कलीसिया के बारे में कैसे सोच रहे हैं। मुझे आपको थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए एक बात को लेने दो, जिससे वो नियम पर चलने वाले पक्ष को वास्तव में निकाला जा सके। आइए हम इब्रानियों के 10वें अध्याय पर चलते हैं और इसकी ओर बस जरा सा देखते हैं। 10वां अध्याय 26वां पद, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। पांव से जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के कार्यों के बावजूद किया। अब आप कहते हैं उसके बारे में क्या भाई ब्रैनम, यह कैसा दिखता है? अब बस पढ़ने के लिए मैं सोचता हूँ वचन ऐसा नहीं कहता है। यह एक मसीह के बारे में बात नहीं कर रहा है, यह एक ऐसे मनुष्य के बारे में बात कर रहा है जिसने वचन को सुना और उससे मुंह मोड़ लिया। देखा, क्योंकि यदि हम पाप करते हैं, पाप क्या है? अविश्वास। यदि हम इस सुसमाचार सुनाए जाने के बाद हम जानबूझकर अविश्वास करते हैं तो वहाँ पाप के लिए और कोई बलिदान नहीं रहता। पाप क्या है? अविश्वास। संत योहन्ना 4वां अध्याय पढ़े, यीशु ने कहा वो जो विश्वास नहीं करता वो पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। धूम्रपान करना, शराब पीना, व्यभिचार करना, ये पाप नहीं है। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप एक अविश्वासी हैं। यह तो बस गुण है। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप एक अविश्वासी हैं। बस धूम्रपान करना छोड़ना, शराब पीना छोड़ना और इसी तरह इत्यादि, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक मसीही हैं। बस यही आपके परिवर्तन के गुण हैं। लेकिन आप कर सकते हो, आप दोनों तरह से कर सकते हैं और फिर भी नहीं हो सकते। अब ध्यान देना, वो जो अविश्वास करता है जानबूझकर उसके बाद वो नहीं उसके हृदय में मसीह को ग्रहण करने के बाद, बाइबल ऐसा नहीं कहती है, कहा वो जो यदि सच्चाई के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर अविश्वास करते रहे, इसे समझा, किसी मसीह के लिए बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा है। कोई महिला मेरे पास आई, ज्यादा समय नहीं हुआ, और कहा भाई ब्रैनम मैं एक मसीही हूँ लेकिन मैंने पवित्र आत्मा की निंदा की है। मैंने कहा यह असंभव है, एक मसीही पवित्र आत्मा की निंदा नहीं कर सकता, आप इसे नहीं कर सकते। एक मसीह का आत्मा मसीह की आत्मा के साथ गवाही देता है, समझे? और आप परमेश्वर की हर एक चीज को परमेश्वर की बताएंगे, लेकिन यदि आप शारीरिक मन वाले हैं तो आप मजाक उड़ाएंगे और पवित्र आत्मा पर हंसेंगे। मैं परवाह नहीं करता कि आप कितना कलीसिया में जाते हैं, आप अब भी एक पापी हैं और आप पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं। जब उन्होंने यीशु को उनके विचारों को परखते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि वो एक ज्योतिष विद्या बताने वाला है। यीशु ने कहा, तुमने मैं तुम्हें इसके लिए क्षमा करता हूँ, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तुम उसके विरोध में एक शब्द भी बोलते हो, इसके लिए तुम्हें कभी क्षमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा उसके पास एक अशुद्ध आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा को एक अशुद्ध चीज कहकर बुलाना, एक मसीही ऐसा नहीं कर सकता। एक मसीही हमेशा परमेश्वर की आत्मा को धार्मिकता बुलाएगा, समझे। एक मसीही पवित्र आत्मा की निंदा नहीं कर सकता, यह तो बाहरी व्यक्ति है जो निंदा करता है। यह वहाँ खड़े हुए मसीही लोग नहीं थे, यह धार्मिक लोग थे, यह रूढ़िवादी यहूदी धर्मशास्त्र के विद्वान इत्यादि थे, और वे उसका और उसके कामों का मजाक उड़ा रहे थे। परमेश्वर के कार्यों को बोल रहे थे कि यह एक अशुद्ध आत्मा कर रही है। और आप कितने लोग ये सोचते हैं जो पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं, उनके नाम के आगे DDD PhD लगा हुआ है। कितने बड़े बड़े लोग कठोर रूढ़िवादी कैथोलिक प्रोटेस्टेंट रास्ते पर चलते हैं और पवित्र आत्मा के कार्यों का मजाक उड़ाते हैं, बस जैसे चमकाए हुए विद्वान और एक बहुत ही चालाक, सही है, लेकिन वे पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाते हैं और इसलिए वे उसकी निंदा करते हैं। लेकिन एक नया जन्म पाया हुआ मसीही ऐसा नहीं कर सकता, वो कहेगा वो मेरा भाई है, यही जीवित परमेश्वर का आत्मा है। ये सही बात है, एक मसीही पवित्र आत्मा की निंदा नहीं कर सकता। यह तो पापी है जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है, वो अविश्वासी पापी एक अविश्वासी है। वहाँ केवल दो बातें हैं, या तो आप विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं। अब यहाँ ध्यान दें, इसे वास्तव में अब तनाव युक्त बनाने के लिए मेरे पास एक दर्शन था जो मुझे हमेशा ही चिंतित करता था। वर्षों पहले मैं इसकी ओर देखा करता था, मैंने कहा ओ यदि एक व्यक्ति एक बार पवित्र आत्मा को पाता है और फिर पीछे हट जाता है तो वो हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। मैं इस दूसरी बात को पकड़ नहीं पाया कि इसके साथ अर्थ निकालूं। मैंने कहा फिर ऐसा क्यों है कि बाइबल ने कहा कि वो जो मेरे वचनों को सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है उसके पास अनंत जीवन है, अनंत, और वो कभी भी न्याय के लिए नहीं आएगा लेकिन मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका है। वे सब जिसे पिता ने मुझे दिया है वो मेरे पास आएगा और उनमें से कोई भी नाश नहीं होगा, मैं उन्हें अंत के दिनों में जिला उठाऊंगा, कोई मनुष्य उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। यह इसके साथ कैसे विभाजित या अलग है, मैं बस इसे समझ नहीं पाया। यह उनके लिए असंभव है जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है। मैंने सोचा वहाँ कुछ तो गलत है, मैं इसे नहीं समझ सकता। और मैं वर्षों पहले पेंटिकॉस्टल की एक छोटी सी सभा में गया था। मैं सोचता हूँ कलीसिया में आज रात कोई नहीं बचा है, मुझे लगता है, जिसे यह याद होगा। वर्षों पहले यह बस आराधनालय के निर्माण के समय की ही बात थी, इतना नहीं, यह वहाँ पहले भाई ग्राम होंगे या कोई और, मैं नहीं जानता आप यहाँ पहले थे या नहीं भाइयों। मैं सोचता हूँ भाई महुनी थे, हाँ, मेरा विवाह होने से ठीक पहले। वो दान काम कर रहा था, मुझे डर था। उन्होंने मुझे बताया कि यह शैतान की ओर से था। जब तक प्रभु के दूत ने मुझे नहीं बताया तब तक मैं नहीं जानता था। मैं मिशावाका गया था और मैं उस सभा में बैठा हुआ था और मैंने इतना अधिक चिल्लाना और रोना और परमेश्वर को स्तुति देना कभी भी नहीं सुना था। मैंने सोचा भाई यह तो स्वर्ग है, और ओह वे किस तरह से ऊपर और नीचे जाते। रंग भेद होने की वजह से उन्हें इसे उत्तर में रखना होता था। वहाँ अश्वेत और श्वेत लोग एक साथ थे, WKPA और JCKPA वास्तव में मिल गए या विलय हो गए थे, और जो यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल बन गया था। लेकिन मिशावाका में भाई रोवे के आराधनालय में उनकी क्या ही बेदारी हो रही थी, और मैं एक छोटा जानने का अभिलाषी मनुष्य पिछली सीट पर बैठा था, यह सब देख रहा था। मैंने इन चीजों को पहले कभी भी नहीं देखा था। वहाँ एक मनुष्य बैठा था, मैंने इसे पहले कभी सार्वजनिक रूप से नहीं बताया। वहाँ एक मनुष्य एक ओर बैठा हुआ था और एक मनुष्य दूसरी ओर था, और एक अन्य जुबान में बोलता था और दूसरा उसका अनुवाद करता था, और वे बताते कि भिन्न भिन्न बातें जगह लेने जा रही हैं। फिर यह एक अन्य जुबान में बोलता और यह एक अनुवाद करता। मैंने सोचा ओह क्या ये अद्भुत नहीं है। मैंने सोचा कितना महिमा में है, वे अवश्य ही दूत होंगे जो मनुष्य के रूप में नीचे उतर आए हैं। तो ठीक है, मेरे पास घर आने के लिए केवल $1.75 थे, और मैं बस पेट्रोल का एक बार टैंक ले सकता था। मैं उस रात एक मकई के खेत में सोया था। मैंने इसका एक भाग एक किताब में डाला है, लेकिन इसकी सारी बात को नहीं डाला है, क्योंकि मैं उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। और इसलिए उस रात उन्होंने कहा सारे प्रचारक मंच पर आ जाएं। मैं मंच पर था, मैं तब वहाँ पर सबसे कम उम्र का प्रचारक था। इसलिए अगली सुबह उन्होंने मुझे प्रचार करने के लिए आने को कहा, मैं छुपने लगा। आप जानते हैं, अश्वेत व्यक्ति ने कहा, यहाँ है वो, आपको इसकी कहानी याद होगी, जब उन्होंने मुझ पर वहाँ बैठे हुए रोशनी को डाला था। और इसलिए उस दिन प्रचार करने के बाद यहाँ वहाँ घूमते हुए मैंने सोचा, क्या मैं केवल उन दो व्यक्तियों से मिल सकता हूँ? उन्होंने सभा का नेतृत्व किया, एक उठता और उसका चेहरा सफेद हो जाता, वो अन्य जुबान में बोलता और दूसरा उसका अनुवाद करता और वचनों को देता। यहोवा यो कहता है, यहाँ एक फलाना फलाना व्यक्ति है, उसका नाम फलाना फलाना है, जो यह करेगा और ऐसा वैसा करेगा। भाई ये सच था। और दूसरा एक उठकर अन्य जुबान में बोलता और वो अनुवाद को करता। मैंने सोचा, ओ परमेश्वर, क्या यह अद्भुत नहीं है? तो उस दिन मैंने सोचा, मैंने बाहर जाकर प्रार्थना की, मैंने सोचा, हे प्रभु, आप मेरे लिए ऐसा फिर से करें। मैं नहीं जानता था कि इसे क्या कहा जाए, दर्शन। मैंने बाहर जाकर और प्रार्थना की और प्रभु से मांगा कि मेरी सहायता करे। मैं इमारत के आसपास घूमने लगा और मैं उनमें से एक के पास चलकर गया। अब प्रभु मुझे बातों को जानने का एक जरिया बताए। मैंने उसका हाथ मिलाया, मैंने कहा, आप कैसे हैं? उसने कहा, आप कैसे हैं? आपका नाम क्या है? और मैंने कहा, ब्रैनम। ओह, उसने कहा, आप ही वो युवा व्यक्ति हैं जिसने आज सुबह प्रचार किया? मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान। जब मैं उससे बातचीत करने लगा तो मैंने उसकी आत्मा को पकड़ लिया और वो एक सच्चा मसीही था, बस एक शुद्ध मसीही भाई, मेरा मतलब है वो एक विश्वासी था। मैंने सोचा, ओह, क्या ये अद्भुत नहीं है? और उसके बाद से लगभग एक घंटे बाद वहाँ कार के पास, जो एक बहुत बड़ी कार दिख रही थी, वहाँ उस कार के पीछे केवल यीशु लिखा हुआ था और वहाँ पर दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ था। और मैं वहाँ पर गया और मैंने कहा, आप कैसे हैं महाशय? उसने कहा, आप कैसे हैं? कहा, आप भाई ब्रैनम हैं जिसने आज सुबह बोला था? मैंने कहा, जी हाँ महाशय, मैं वही हूँ। मैंने कहा, कहूँ तो मैं उन परमेश्वर के महान दान का आनंद लेता हूँ जो आप दोनों भाइयों में कार्य करता है। उसने कहा, धन्यवाद श्रीमान ब्रैनम। और मैं उसकी आत्मा को महसूस करने लगा, एक दर्शन आया। और यदि मैंने अब तक किसी ढोंगी से बात की है तो वो उनमें से एक था। उसकी पत्नी एक अश्वेत सिर वाली महिला थी, वो एक श्वेत सिर वाली महिला के साथ रह रहा था। उनमें से उसके दो बालक थे। दुनिया में किसी के भी तुलना में वो अब एक मसीही नहीं था। तब मैंने कहा, मैं कहाँ पर गया हूँ? मैंने सोचा था कि मैं दूतों के बीच में था और अब मैं अवश्य ही दुष्टात्माओं के बीच में होऊंगा। कुछ तो हुआ है। यहाँ एक था जो एक सच्चा मसीही है और वही आत्मा इस मनुष्य पर उतरती थी और वही इस मनुष्य पर उतर रही थी। मैंने कहा, अब मैं पूरी तरह से उलझन में हूँ। मैं नहीं जानता था कि क्या करना है। मैं रोया और प्रभु से विनती की। मैं नहीं जानता था कि क्या स्वीकार करना है। वे मेरे पास आने पर थे, मुझसे पूछा कि क्या मुझे पवित्र आत्मा मिला है। इस व्यक्ति ने पूछा और मैंने कहा, नहीं महोदय, उस तरह से नहीं जिस तरह से ये आपको मिला है। कहा, आप कभी भी अन्य जुबान में बोलते हैं? मैंने कहा, नहीं श्रीमान। कहा, तब आपको यह नहीं मिला है? तो मैंने कहा, आप हो सकता है सही कह रहे हैं मेरे भाई, हो सकता है मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है जो आपके पास है। और थोड़े समय के बाद मैं खुश था कि मुझे उस तरह से नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने यह ध्यान दिया और मैंने वो रास्ता देखा जो आगे बढ़ रहा था। तो एक दिन मैं यहाँ बहुत पहले प्रार्थना कर रहा था। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। मैं जिसके लिए प्रार्थना कर रहा था वो रॉय डेविस थे और मैं यहाँ प्रार्थना कर रहा था क्योंकि उसने मुझे एक कठपुतली कहकर बुलाया था और मैं परमेश्वर से उसके लिए क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा था। और उसके पास वहाँ पहले एक प्रेस थी, एक अखबार में लिखा था और उस प्रेस में आग लग गई और जल गई उसके कुछ रात बाद जब वे इसे चला रहे थे। और सो मैं वहाँ पीछे खड़ा हुआ था, ग्रीन मिल के पीछे एक पुरानी गुफा में। मैं वहाँ के लिए निकला और मैं वहाँ पीछे दो दिन प्रार्थना कर रहा था। मैंने अपनी बाइबल को एक पुराने लकड़ी के लट्ठे पर रख दिया जहाँ मैंने कुछ समय पहले ही भाई वुड को दिखाया था मैंने अपनी बाइबल रखी थी। मैं उस लकड़ी के लट्ठे पर पैर फैलाकर बैठ गया और हवा चली। मैंने सोचा, बहुत समय पहले पीछे उस गुफा में मैंने तब कुछ पढ़ा था, सो मैंने बाइबल उठा लिया और पढ़ना शुरू किया। और यह वो अध्याय था जिस पर यह था। तो ठीक है, मैंने पढ़ना शुरू किया और तब मैंने सोचना आरंभ किया, समझे, क्योंकि ये उनके लिए असंभव है जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, पवित्र आत्मा के सहभागी हो गए हैं, परमेश्वर के अच्छे वचन का स्वाद चखा है। और आने वाले युग यदि वे भटक जाएं, तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनुहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। मैंने सोचा यहाँ वो वचन है, लेकिन मेरे साथ कुछ बोझ था। तब मैंने सोचना आरंभ किया, यही है जहाँ उसने शुरुआत में पहले यहाँ बात की थी, ना ही पश्चाताप करने की मरी हुई नींव को आरंभ में रखते हुए, ना ही पश्चाताप की नींव को रखते हुए। और यहाँ वो कहता है अपने आप को फिर से पश्चाताप के लिए नया बनाते हुए, लेकिन आइए इन चीजों को पीछे छोड़ते हुए सिद्धता की ओर आगे बढ़े। फिर मैंने पढ़ना आरंभ किया, फिर मैंने अगला पद पढ़ा, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर उन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उप जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वो झाड़ी और उत्कंटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। और जब मैंने इसे पढ़ा तो किसी बात ने मुझे हिला दिया और मैंने सोचा, प्रभु यह बात रॉय डेविस से संबंधित नहीं है, आप ऐसा क्यों करेंगे? मैंने दूसरा पन्ना पलटना आरंभ किया, मुझे फिर से इसमें वापस जाना पड़ा। ये उनके लिए असंभव है जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, ये इसमें फिर से चला गया। तब मैंने सोचा, प्रभु ये क्या है, प्रभु आपका क्या मतलब है? और मैं मुड़ा और उस पर प्रार्थना करने के लिए अपनी गुफा में वापस चला गया। और जब मैंने प्रार्थना की तो मैंने देखा दुनिया घूम रही है और ये पूरी तरह से गोल चक्र हो गया था, बहुत सुहावना सारी दुनिया। और मैंने श्वेत रंग के एक मनुष्य को देखा जो हर कहीं जा रहा था, उसके हाथ में एक थैला था, वो घूमते घूमते बीजों को बो रहा था। वो पृथ्वी की गोलाई के चारों ओर चला गया और जैसे ही उसने चारों ओर घूम लिया, यहाँ गहरे काले कपड़े पहने हुए एक मनुष्य आया, एक धूर्त सा दिखने वाला व्यक्ति, साथ ही इस तरह से सरकते हुए देख रहा था और उसके पास एक बीज था। और जैसे ही वो पृथ्वी के चारों ओर घूम आया, वो उसके पीछे आकर कुछ तो फेंक रहा था, हर एक को देख रहा था और फेंक रहा था। मैं खड़े होकर और दर्शन को देख रहा था। उसके चले जाने के बाद दुनिया घूम गई और वहाँ एक बहुत ही बड़ी फसल खड़ी हो गई और ये गेहूं की थी, और गेहूं में जंगली पौधे, ऊंट कटारे या धतूरा और इत्यादि थे। वहाँ अकाल आ गया और ओह, किस तरह से छोटे छोटे गेहूं ने अपने छोटे से सिर ऊपर लटका दिया और पानी के लिए प्यासे हो रहे थे। उस छोटे ऊन कटारे या धतूरे का सिर ऊपर लटका हुआ था और ये पानी के लिए प्यासा हो रहा था, सभी बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और कुछ समय बाद वहाँ एक बड़ा बादल आ गया और उसने पूरी धरती को पानी से सींचा और वो छोटे से ऊन कटारे या धतूरे उछल पड़े, चिल्लाने लगे, परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और छोटा सा गेहूं वो उछल पड़ा, चिल्लाने लगा, परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। और फिर मेरे पास वचन आया जो मती की किताब में मिलता है, 5वां अध्याय और 45वां पद, और सुनना जो यीशु ने कहा मती 5:45 में। और अब ध्यान से सुनना जैसा कि हम पढ़ते हैं, मती 5वां अध्याय और 45वां 46वां पद, 44वें पद से शुरू करते हुए, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, जो तुम्हें शाप देते हैं उन्हें आशीष दो, और उनसे अच्छा करो जो तुमसे घृणा करते हैं, और उनके लिए प्रार्थना करो जो द्वेष पूर्व तुम्हें उपयोग करते हैं और तुम्हें सताते हैं, जिससे तुम हो सकता है कहलाओगे, हो सकता है तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भलो और बुरो दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। तो आपने देखा वही बारिश जो गेहूं को बढ़ाती है, एक उटकंटारे या धतूरे को बढ़ने को लगाती है। और इसलिए मुझे तस्वीर मिल गई, वहाँ आपका शारीरिक अंगीकार करता है यही है जो ठीक कलीसिया में है, लेकिन उसके फल, वो हो सकता है चिल्लाए, कूदे, नाचे, अन्य जुबान में बोले, लेकिन उसके फल वो एक ऊन कटारा या धतूरा है, और वहाँ एक और दूसरा है उसके पास वही आत्मा है। पवित्र आत्मा ठीक लोगों के एक ही झुंड में उतर सकता है और एक ढोंगी चिल्ला सकता है पवित्र आत्मा के द्वारा, ठीक उसी तरह जैसे ऊंट कटारा भेजी गई बारिश से जीवित रह सकता है। यही है जो पौलुस यहाँ पर बात कर रहा है। लेकिन ये असंभव है ऊंट कटारे या धतूरे के लिए कि वो गेहूं बने या गेहूं के लिए ऊंट कटारा बनना। आपने इसे समझ लिया? क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है यह उनके लिए असंभव है और पवित्र आत्मा के दान के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। वे भटक जाएं, फिर से खुद को नया बनाना अनहोना है। सुनना उसने क्या कहा, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है ताकि इसे पानी दे और इसे यहाँ सींचने के लिए, इसे तैयार करने के लिए। परंतु यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी होने पर है। अब इसलिए आओ मसीह की शिक्षा और सिद्धांतों की बातों को छोड़कर आओ हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, ना ही फिर से मरे हुए कामों से मन फिराने की नींव डालते हुए और परमेश्वर की ओर विश्वास और इत्यादि और बपतिस्मा की शिक्षा हाथों को ऊपर रखना और इत्यादि। देखिए शारीरिक विश्वासी पहले उन दिनों में बिल्कुल जैसे ये आज है जो कहना पसंद करते हैं, तो ठीक है मैं कलीसिया से संबंध रखता हूँ, मैंने पश्चाताप किया है, मैंने ऊपर आकर मैंने पाप स्वीकार किया, मुझे बपतिस्मा दिया गया है। देखो वे उन शारीरिक सुधारों पर बने हुए हैं और यह क्या करता है, यह ऊंट कटारे या धतूरे को उत्पन्न करता है। सिद्धता क्या करती है, यही वो गेहूँ है। गेहूँ ये परमेश्वर का वचन है, वो इसे अपने वचन की नाई उपयोग करता है, यह उसका बीज है, यह उत्पन्न करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके हृदय में कौन सा बीज बोया गया है। यदि आप कलीसिया में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि आप नरक से डरते हैं, यदि आप कलीसिया में जुड़ते हैं क्योंकि आप नरक में नहीं जाना चाहते, आप अब भी एक ऊंट कटारे हैं। यदि आप कलीसिया में सिर्फ लोकप्रिय होने के लिए जुड़ते हैं तो आप अब भी एक ऊंट कटारे हैं। यदि आपने इन सारे औपचारिक कामों को किया है जो किए जाने हैं और आपके पास बस इतना ही है तो आप अब भी एक ऊंट कटारे हैं। लेकिन एक वास्तविक सच्चा मसीही सिद्धता की ओर आगे बढ़ता है जब तक संसार मर नहीं जाता और आप मसीह यीशु में एक नई सृष्टि नहीं बन जाते, तब उस मनुष्य का कभी भी गिरना ये असंभव है। यही बाइबल ने कहा। देखा यह किस तरह से बाकी के वचन के साथ तुलना करता है, देखा यह इसे ठीक वहाँ अपने स्थान पर कैसे रखता है। यहाँ किस तरह से ये कह सकता है एक बार बचाया गया मनुष्य कभी भी नाश नहीं हो सकता और यहाँ आकर और कहता है लेकिन यदि आप नाश हो गए हैं या ईश निंदा कर रहे हैं तो यह असंभव है। यकीनन यदि आप ईश निंदा करने वाले हैं तो आप मसीही नहीं हैं। कोई भी मनुष्य जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोलता है यीशु को शापित नहीं कहता। संत यूहन्ना 4 मतलब पहला यूहन्ना 4, कोई भी व्यक्ति जो मसीह की आत्मा के द्वारा बोलता है यीशु को शापित नहीं कहता। परमेश्वर का हर एक आत्मा जो कि मसीह कलीसिया में है वो परमेश्वर के द्वारा कही हर बात से सहमत होता है। हम यहाँ पढ़ते हैं और कहते हैं वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया था, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। पुराना शारीरिक मन कहता है अद्भुत काम के दिन बीत चुके हैं, मैं डॉक्टर जोन्स हूँ, देखा जीव्य चंगाई जैसी कोई चीज ही नहीं है, हृदय को छूने वाला धर्म जैसी कोई चीज ही नहीं है, आप बस एक उत्तेजित झुंड हैं, आप भावुक लोग हैं। देखिए इसमें बस इतना ही है, इसमें कुछ भी नहीं है, हम प्रेस्बिटेरियन हैं, हम लूथरन हैं या जो कुछ भी ये है, हम जानते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, यीशु मसीह वही यहाँ पर है। परमेश्वर का आत्मा आमीन कहता है, यह शीघ्र ही वचन के साथ सहमत होता है। जी हाँ श्रीमान, यह ठीक वहाँ पर है। देखा अब मेरा क्या मतलब है, ये शारीरिक सुधार मृत्यु का काम करते हैं, पौलुस ने कहा। लेकिन जहाँ जीवन आता है यह सिद्धता, वह जो मेरे वचनों को सुनता है उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है उसके पास अनंत जीवन है और कभी भी दोषी नहीं ठहरेगा लेकिन मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं उसे सनातन का जीवन दूंगा, अंत के दिनों में उसे जिला उठाऊंगा। पिता ने जिस किसी को मुझे दिया है वे सब मेरे पास आएंगे और उनमें से कोई भी नाश नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो यहाँ है ये जो करता है। लोग सोचते हैं कि इससे लोग ढीले ढाले पड़ जाते हैं। भाई, आप सर्प के तेवर के नीचे परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं। परमेश्वर इन लोगों में से एक नहीं है जो एक काले सांप के चाबुक के साथ है, जो आपको इधर उधर चलाते हैं। वो एक पिता है, वो प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, और बाइबल ने संत यूहन्ना में कहा, वह जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर का है। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्या मैं बाहर जाकर और आज रात शराब पीऊंगा? मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पिया, लेकिन यदि मैं बाहर जाकर और शराब पीता हूँ तो मुझे कोड़े खाने का डर नहीं लगेगा। यह वो कारण नहीं है कि मैं नहीं जाकर इसे नहीं करता। मेरे ऐसा न करने का कारण ये है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, वह मुझे प्रेम करता है। यह नियम का काम नहीं है, यह ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने पहले से ही मेरे लिए कुछ तो किया है, और मैं इसके लिए उससे प्रेम करता हूँ। वहाँ आप हैं। तो उस आत्मा के साथ जिसकी प्रतिज्ञा की गई है, मैं उसे सनातन का जीवन देता हूँ, और वे कभी भी नाश न होंगे। क्या उसने झूठ बोला या उसने सच बताया? उसने सच बताया। तो आप देखते हैं कि यह कैसे अनुवाद करता है। एक बार अनुग्रह में आने के बाद मनुष्य के लिए गिरना असंभव है। वो नहीं कर सकता, वो निश्चय ही गिर सकता है, लेकिन ना ही वापस पश्चाताप करने के लिए, ना वापस स्थान पर आने के लिए, और ना पुराने कामों को फिर से करने के लिए। सो आप सब बेदारी से बेदारी की ओर धीरे धीरे दौड़ रहे हो, एक स्थान और फिर दूसरा स्थान। क्या आप नहीं देखते कि आप स्थिर नहीं हैं, आप स्थापित नहीं हुए हैं? अब निश्चित रूप से आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, मैं नहीं जानता कि क्या, निश्चय ही परमेश्वर मुझे उस सेवकाई को नहीं देगा जो उसके पास है, और मुझे गलती में रहने दे। और यदि इसे वचन के द्वारा साबित नहीं किया गया था, तब यह गलत होगा। लेकिन यहाँ इसका समर्थन करने के लिए वचन है, कलीसिया ने कभी कोई भी स्थान को नहीं छोड़ा। लोग जाते हैं, कलीसिया में जुड़ते हैं, वाद विवाद को करते हैं, लड़ाई करते हैं, बेचैन करते हैं, और हर एक चीज करते हैं, और बस किसी भी प्रकार का शारीरिक जीवन जीते हैं। ओ हाँ, मैं एक मसीही हूँ। मैंने आज एक छोटी सी महिला के अंगीकार को सुना, जिसने मुझे बताया कि उसका पति एक पुरुष के साथ भाग रहा था। उसने उन्हें जगह जगह पकड़ा, और महिला कहती है, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं एक मसीही हूँ। यहाँ पर जिमी ऑसबोर्न को देखें, यहाँ रविवार की सुबह प्रचार करते हैं, और बुगी बुगी, रॉक एंड रोल, नाच और सब कुछ पूरे सप्ताह भर करते हैं। एल्विस प्रेस्ली को देखें, जो यहूदा स्क्रोतियों का 1947 का संस्करण है, जो असेंबलीज ऑफ गॉड की सभाओं में शामिल होता है, पेंटिकॉस्टल, पवित्र आत्मा के लिए अन्य भाषा में बोलते हैं, और पिछले 50 वर्षों में जितने भी सारे लूटपाट हुए हैं, उसकी तुलना में उनसे भी अधिक प्राणों को यातना के लिए भेजा है। दुनिया भर के छोटे छोटे किशोर उम्र के बच्चों के दिमाग को दूषित किया है, इतना तक कि छोटी छोटी लड़कियां उनके अंदर के वस्त्रों को लेकर मंच पर फेंकती हैं, जिससे कि वो हस्ताक्षर करे। इतना अश्लील कि वे उसे टेलीविजन में उसकी कमर से नीचे नहीं दिखाते हैं, जिस तरह से उसका शरीर होता है। पवित्र आत्मा प्रमाण के लिए अन्य जुबान में बोलता है। ओह भाई, यदि पवित्र आत्मा वहाँ होता था तो वो ऐसा कार्य नहीं करता। आप उससे बेहतर जानते हैं, बिल्कुल ही नहीं। परमेश्वर साफ और शुद्धता और पवित्रता को पसंद करता है। मैं स्वयं को मसीही बनाने के लिए साफ और शुद्ध और पवित्र कार्य नहीं करता, लेकिन मसीह मुझ में रहता है, और उससे प्रेम करता हूँ। और यदि मैं कुछ भी गलत करता हूँ तो यह मुझे दोषी ठहराता है। ठीक तभी मैं कहूँगा, परमेश्वर मुझे क्षमा करें। हर एक दिन मैं हर दिन क्षमा मांगता हूँ, और आप भी ऐसा ही करते हैं, निश्चित रूप से आप करते हैं। लेकिन अब यदि आप शारीरिक हैं, तो आप बस पीछे रुके रहते हैं, कहते हैं, आह तो ठीक है, ये अच्छी बात है, मैं कलीसिया से संबंध रखता हूँ, देखा। और फिर जब आप निश्चिंदा करते हैं, ऐसा तब होता है जब आपके पास वो विश्वास नहीं होता जो एक बार संतों को सौंपा गया था। तब आप उसका मजाक उड़ाते हैं, और इसे एक दुष्ट आत्मा कहकर बुलाते हैं, कहते हैं, यही पवित्र शोर शराबा करने वालों का झुंड है। उसके बाद आप अपने आप को अनुग्रह और न्याय के बीच अलग करते हैं, तब आप हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। यीशु ने कहा, इसके विरोध में एक शब्द को कहना इस दुनिया में या आने वाली दुनिया में कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। और एक मसीही जो आत्मा से जन्मा है उसके बारे में बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि ये नहीं कर सकता यह इससे सहमत होता है। यह सही बात है। यही वो कारण है कि लोग मुझे यह बताने की कोशिश करते हैं कि वो आग का स्तंभ जो यहाँ हमारे साथ दिखाई देता है, वे कहने की कोशिश करते हैं कि वो शैतान था, वो यह बस कल्पना थी यह सब। लेकिन कैमरे ने इसे साबित कर दिया कि ऐसा नहीं था, और वे काम बिल्कुल बाइबल अनुसार थे। वही आग का खम्बा जो पौलुस से दशमिश के रास्ते में मिला था, ये सारे काम जो उसने वहाँ पहले किए वो इसे ठीक उसी तरह से कर रहा है बाइबल से। यह मसीह है, वो परमेश्वर का पुत्र। और जब हम फिर से जन्म लेते हैं तो हमारे पास सनातन का जीवन होता है, और हम नष्ट नहीं हो सकते। एक मनुष्य के लिए गिरना असंभव होगा, यही है जो बाइबल कहता है। अब सुनना, देखो पौलुस क्या कहता है। मैं इसके बाकी के भाग को पढ़ूंगा और देखूंगा कि क्या अब यह सही नहीं दिखाई देता है। आइए आगे बढ़ते हैं, बस एक मिनट। आठवां पद पर, यदि वो झाड़ी और उठकंटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है, यही अविश्वासी है। अब पौलुस को देखें, लेकिन प्रिय, अब वो उनके बारे में बात कर रहा है, नियम के तहत वापस आने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं, नियम के सारे कामों को करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भी वे उतने ही औपचारिक या अनुष्ठान हैं जितने वे हो सकते हैं। उनके पास बपतिस्मे और हाथ रखना और ये सारी चीजें हैं। लेकिन प्रिय, तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी बातों का भरोसा करते हैं। वहाँ आप हैं, अब उसकी बात को सुनना। और चीजें जो उद्धार के साथ आती हैं, हालांकि इसके माध्यम से हमने इस प्रकार बात की, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम के परिश्रम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि तुमने पवित्र लोगों की सेवा की है और कर भी रहे हो। देखा कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो मसीह लोगों के गिरने की बात नहीं कर रहा है कि उनके लिए वापस आना असंभव है। वो शारीरिक विश्वासियों के बारे में बात कर रहा है जो सुधारक के तरीके से होकर जाते हैं। लेकिन उसने कहा, आपके लिए जो फिर से जन्मे थे, आप जो मसीही हैं, प्रियो, आपके विषय में हम अच्छी बातों का भरोसा करते हैं। आप उन चीजों को नहीं कहते हैं, आप उस तरह का जीवन नहीं जीते हैं, आप मसीह के साथ सुरक्षित हैं। उसने यहाँ पीछे क्या कहा, अब आइए हम इब्रानियों 10 की ओर जाएंगे, जहाँ हम आज सुबह फिर से थे। अब हम फिर से इफिसियों 4:30 की ओर वापस जाएंगे और आइए इसे लेंगे, बस एक मिनट, और देखें कि यह क्या कहता है। इसका समर्थन करने के लिए, वचन को वचन के साथ जोड़ने के लिए, इफिसियों 4, आइए हम देखें, इफिसियों 4:30, आइए पढ़े और देखें कि यह क्या कहता है। सुनना, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। हमने कैसे शरीर में बपतिस्मा लिया? एक आत्मा से। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन तक के लिए छाप दी गई है। ये सही है, आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा मसीह के देह में मोहरबंद हैं, ना ही एक बेदारी से दूसरी बेदारी तक, लेकिन देह के छुटकारे के दिन तक, यही है जो आप हैं। तो वहाँ आप किसी भी तरह से नाश नहीं हो सकते हैं। आप डर जाते हैं, और यही कारण है, डरते हैं, डर के साथ संदेह आ जाता है, प्रेम के साथ विश्वास आता है। मैं अपने पिता से प्रेम करता हूँ, मैं उनसे डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ। वह मुझे दुख नहीं पहुँचाएगा, वह मेरे लिए भला करेंगे यदि मैं उनसे डरता हूँ। और ओह, मैं नहीं जानता कि वो ऐसा करेंगे या नहीं, देखा, लेकिन यदि मैं उनसे प्रेम करता हूँ, हाँ पिता, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप मेरे पिता हो और आप मुझसे प्रेम करते हो, और मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन आप अपने वचन को पूरा करेंगे, यह आपकी मुझसे प्रतिज्ञा है। इसी तरह से परमेश्वर का आत्मा करता है। लेकिन ओह, यदि मैंने वैसा किया, देखो वहाँ आप फिर से नियम की तरफ आते हैं। कभी भी नियम की तरफ न जाएं, यह नेगेटिव है। वास्तविक तरफ वो है जो आप चाहते हैं, यह पहले से ही पूरा हुआ काम है। मसीह मरा, और जब वो मरा तो पाप खत्म हो गया। और यदि परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन के लिए पहले से ठहराया है, जिस किसी को पिता ने मुझे दिया है, वे सब मेरे पास आएंगे। आप वहाँ हो, नाश नहीं हो सकते, आप हमेशा के लिए सुरक्षित हैं, क्योंकि एक आत्मा के द्वारा हम सब ने एक देह में बपतिस्मा लिया है और एक बलिदान के द्वारा उसने हमेशा के लिए सिद्ध किया है। वहाँ आप हो, हम किसी भी तरीके से नहीं खो सकते हैं सही तरह से। अब क्या यह आपको अच्छा महसूस करने को नहीं लगाता है? अब आप कैसे जानते हैं कि आप एक मसीही हैं, जब आपकी आत्मा उसकी आत्मा के साथ गवाही देती है, जब परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में होता है, जब आपके पास प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दयालुता, धीरज, भलाई, नम्रता होती है, यही है जब आप आत्मा के फल आपके जीवन के पीछे पीछे आते हैं। ना ही इसलिए कि आप आत्मा में नाच सकते हैं, ओह इस आधुनिक लय में इसे पियानो पर बजा सकते हैं, इसमें से बहुत से यहाँ आत्मा में नाच रहे हैं, वे चीजें ठीक है, लेकिन उन्होंने सारी बात को उस नियम की तरफ ले लिया है। देखो, और इसलिए उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को पीछे छोड़ दिया है। यही वो कारण है कि जब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करना आरंभ किया, उन्होंने कहा बेकार की बात है, हम नहीं चाहते कि इससे कोई लेना देना रखें। वे परमेश्वर को नहीं जानते, उन्होंने इसे कभी भी नहीं देखा है, वे इसे नहीं समझ सकते, क्योंकि वहाँ पर एक अलग ही जीवन है। वो नहीं जानता, ऊंट कटारा या धतूरा नहीं जानता कि गेहूं क्या कर रहा है, वो एक अलग ही जीवन है। इसी तरह से एक मसीही के साथ होता है, शारीरिक विश्वासी के लिए अंगीकार करता, जो वहाँ जाकर और अंगीकार करता है, ओह हाँ मैं एक मसीही हूँ, उसके मुंह में एक बड़ा सिगार होता है, एक टेक्सास के कटे सिंग वाले बैल की तरह। एक महिला उसके छोटे कपड़े पहने हुए कहती है, ओह हाँ मैं कलीसिया के सदस्य हूँ, निसंदेह मैं हूँ। आपके फल साबित करते हैं कि आप शारीरिक के अलावा और कुछ नहीं है, यह सही बात है, निश्चित रूप से ऐसा है। वहाँ केवल एक ही चीज है जो कि इसके लिए अनुमति देती है, यह या तो मानसिक कमी के कारण है या आप पर कामुकता की आत्मा है, यह सही बात है। यदि आप संसार की तरह काम करना चाहते हैं, तो बाइबल ने कहा यदि आप संसार से या संसार की चीजों से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम आप में है भी नहीं, तो आप वहाँ हो। अब आप कहते हो ओह बाइबल ने कहा है तो मुझे ऐसा अवश्य ही करना होगा, नहीं ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर बने रहे जब तक मसीही आपके लिए कुछ नहीं कर लेता है, जो आप में से इसे दूर कर देता है, तब आप परमेश्वर के आत्मा से जन्म लेते हैं। ये ऐसा नहीं कि आप जो करते हैं, ये तो वो है जिसने आपके लिए किया है। जब तक आप एक प्रेम को न पा लें कि आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, और उसके बाद आप अपने जीवन को देखें, क्या ये समय को गवाता है? इसलिए नहीं क्योंकि आप अपने जीवन को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसलिए कि परमेश्वर आपको अपनी आत्मा के अधीन लेकर आता है। ये आप स्वयं नहीं हैं जो परमेश्वर के मार्ग में अगुवाई कर रहे हैं, ये तो परमेश्वर है जो अपने तरीके से आपकी अगुवाई कर रहा है, न ही आप अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। अब इसे देखिए, अब जैसे हम अंत की ओर आगे जाते हैं, 11वां पद, और हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। अब यहाँ बस एक और ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा देते समय, जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा कि मैं सचमुच तुझे आशीषों में आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। जब परमेश्वर अब्राहम से मिला, अब अब्राहम ने बिल्कुल ही बिना किसी योग्यता के वाचा को पाया। वाचा अब्राहम के साथ बांधी गई थी, यह कुल मिलाकर पूरी तरह से अनुग्रह है। अब्राहम एक बहुत अच्छा मनुष्य नहीं था, वो एक पवित्र मनुष्य नहीं था, वो तो बस एक साधारण सा मनुष्य था, और परमेश्वर ने चुने जाने के द्वारा अब्राहम को चुना, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना था, ना ही इसलिए कि अब्राहम इसे चाहता था, क्योंकि ना तो अब्राहम ने ऐसा किया, क्योंकि ना तो वो एक अच्छा मनुष्य था, क्योंकि ना ही उसके पास कुछ भी योग्यता थी, लेकिन यह परमेश्वर का चुनाव था। परमेश्वर ने अब्राहम को ले लिया। आज जैसा मैंने कहा, मैं विश्वास करता हूँ हम अपने प्रचारकों को चुनते हैं। हम यहाँ वहाँ जाते हैं, कहते हैं तो एक डीकन छोड़कर चला गया, आओ हम उसके स्थान को लेने के लिए इमारत में सबसे अच्छे व्यक्ति को ढूंढे, तो पास्टर छोड़कर चला गया, आओ हम ढूंढे, हमें सबसे अच्छा मिल जाएगा। कभी कभी यह सही नहीं होता है। जब उन्होंने यहूदा के स्थान को लेने के लिए एक व्यक्ति को चुना तो उन्हें गलत व्यक्ति मिल गया। उन्हें एक सज्जन व्यक्ति मिला, मतियाहा, जो एक बड़ा धर्मशास्त्री, एक विद्वान, एक व्यवहार कुशल था। उन्होंने कहा तो बस वास्तव में उस स्थान को ले लेगा। भाई, वह एक खरे मनुष्य की तरह दिखाई देता है, लेकिन यह परमेश्वर की पसंद नहीं थी और उसने उस मनुष्य को लिया, और उसने परमेश्वर के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन परमेश्वर ने एक छोटे, क्षीण, ऊंचे मिजाज के, नोकीले नाक वाले यहूदी को चुना, जो उसके चेहरे के भाव के साथ वहाँ आता है, मैं वहाँ पर जाऊँगा, मैं उन्हें गिरफ्तार कर लूँगा। परमेश्वर ने कहा, मैं उसमें कुछ तो देखता हूँ, मैं उसका उपयोग करूँगा। और परमेश्वर तब उसके सामने उसी तेज प्रकाश में प्रकट हुआ और उसने कहा, आप कौन है प्रभु? कहा, मैं यीशु हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए अधिकार पाए लोगों के खिलाफ लड़ना कठिन है, तुम मुझे क्यों सता रहे हो? इस तरह से, और परमेश्वर ने उस मनुष्य को ले लिया और उसे सबसे महान पुरुषों में से एक बना दिया, जो कि यीशु मसीह के बाद से कभी धरती के सामने आया है। यह परमेश्वर का चुनाव था। आज हम चुनाव करने की कोशिश करते हैं। आप जो कलीसियाएं हैं, आप इस मनुष्य को यहाँ भेजते हैं और उस मनुष्य को यहाँ भेजते हैं। इसे इस तरह नहीं होना चाहिए। परमेश्वर अगुवाई को करता है। यह सब में परमेश्वर है, सब में होते हुए, समस्त रूप से, ना ही जो किसी कलीसिया के कोई दस्तावेज हैं। ये तो वो है जो उसके बारे में परमेश्वर ने कहा, जो मायने रखता है। ध्यान दें, परमेश्वर ने अब्राहम से एक प्रतिज्ञा की, बिना शर्त की, और अब रुकना, अब्राहम को एक भी चीज को नहीं करना था। परमेश्वर ने कहा, मैं इसे पहले ही कर चुका हूँ। परमेश्वर ने आदम से एक प्रतिज्ञा की, कहा, आदम, यदि तुम इसे नहीं छूते हो तो तुम हमेशा के लिए जीवित रहोगे, लेकिन जिस दिन तुम इसे खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। आदम ने कहा, मैं सोचता हूँ कि फिर भी ये सब क्या है। वो वहाँ पर जाता है और इसे हाथ लगाते हुए खाता है। हर बार जो परमेश्वर करता है, एक मनुष्य परमेश्वर से वाचा बांधता है या परमेश्वर मनुष्य से वाचा बांधता है, मनुष्य अपने कर्तव्य को तोड़ देता है, तो परमेश्वर को कुछ करना था, क्योंकि उसने देखा है कि मनुष्य क्या है, और उन्हें पहले से ठहराया गया था, वे चुने गए थे, और परमेश्वर को कुछ तो करना था। तो परमेश्वर नीचे आया और बिना किसी शर्त के अब्राहम के साथ अपनी वाचा को बांधा। यदि यह बिना शर्त नहीं होता तो अब्राहम नाश हो गया होता बहुत पहले। उसे गरार में बैठा हुआ देखें, पिछड़ा हुआ, झूठ बोल रहा है, और अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के हाथ में करने के लिए, ताकि उसका अपना शरीर बचा रहे। क्या मनुष्य है, वहाँ पर बैठा हुआ है और पिछड़ा हुआ। परमेश्वर ने उसको बताया, कहा, तुम यहाँ से छोड़कर मत जाना, यहीं बने रहो। अकाल के कारण उसे वहाँ से जाना पड़ा। वह भटक कर वहाँ गया जहाँ जाना आसान था। आप जानते हैं कि उस एक व्यक्ति के साथ क्या होता है जब वो आसान रास्ते को अपना लेता है। वो इधर उधर भटकता रहा, वहाँ पर जहाँ घास हरी थी, और जब वो वहाँ पर गया तो उसने उस राजा से कहा कि उसकी पत्नी उसकी बहन है, जिससे कि अपनी खाल को बचा सके। अब यह एक झूठ था, और कोई भी पुरुष उसकी पत्नी को ले जाकर किसी दूसरे पुरुष के हाथ दे देता है अपनी खाल को बचाने के लिए। वहाँ पर वो एक छोटे से तंबू में बैठा हुआ था, पिछड़ा हुआ, झूठ बोल रहा था, और उसके बाहर पूरी तरह से प्रतिज्ञा और हर चीज से अलग हो गया था, लेकिन वो अब भी परमेश्वर का नबी था। और वहाँ अबीमेलेक था, वो एक अच्छा पवित्र मनुष्य था, निश्चय ही हर रात उसकी प्रार्थना को करता था। 100 वर्ष की इस दादी को देखा वहाँ नीचे आती है, जो सुंदर और फिर से जवान थी। उसने कहा, यही है वो लड़की जिसका मैंने इंतजार किया है, इसलिए मैं अब उससे विवाह करूँगा। अब्राहम ने कहा, आप उससे विवाह कर सकते हैं, वो मेरी बहन है, वो कहती है वो मेरा भाई है। सो वह उसे वहाँ पर ले गया और स्त्रियों से पूरी तरह से उसे नहलाने को कहा और अच्छे कपड़े पहनाने को कहा, और उसे एक राजकुमारी की तरह तैयार करने के लिए। तब उसने बिछोने पर लेटकर प्रार्थना की और उसके पांव को घुमाया और कहा, कल मैं उस खूबसूरत इब्रानी लड़की से विवाह करूंगा जो वहाँ उस लड़के की बहन है। ओ, ये बहुत ही अच्छा होगा। हे प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। जी हाँ श्रीमान, अद्भुत। और परमेश्वर ने कहा, तुम लगभग एक मरे हुए मनुष्य के जैसे हो। मुझे क्षमा करें, क्यों? अब्राहम वहाँ पर बैठा हुआ था, झूठ बोल रहा था, पिछड़ा हुआ, और यहाँ पर ये मनुष्य था, एक ईमानदार और धर्मी और सीधा सादा मनुष्य। क्यों? उसने कहा, हे प्रभु, आप मेरे हृदय की सच्चाई को जानते हैं। क्या उसने मुझे नहीं बताया वो उसकी बहन थी? कहा, मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई को जानता हूँ, यही कारण है कि मैं तुम्हें मेरे विरुद्ध पाप करने से रोक रहा हूँ। ये सही बात है, मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई को जानता हूँ, लेकिन उसका पति मेरा भविष्यवक्ता है। हालेलुया। ओह, यह अनुग्रह नहीं तो और क्या है? पिछड़ा हुआ, झूठ बोल रहा है और वहाँ बैठा हुआ है, लेकिन वो अब भी मेरा भविष्यवक्ता है। तुम एक भेंट को लेना और उसके पास जाओ और उसकी पत्नी को वापस ले जाओ, या तो तुम एक मरे हुए मनुष्य हो। अब मैं और तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा, उसे तुम्हारे लिए प्रार्थना करने दो। आमीन। आप वहाँ हो, वो मेरा भविष्यवक्ता है। अब आप कहते हो, ओह, काश मैं अब्राहम होता। यदि हम मसीह में मरे हैं, तो हम अब्राहम के बीज हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हैं। सही है, यही है जो बाइबल ने कहा। क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगे? क्योंकि बाइबल ने कहा कि प्रतिज्ञा केवल अब्राहम और उसके बीजों के लिए ही नहीं थी, जैसे कि आप अब्राहम के बहुत बीज थे, निश्चित रूप से बहुत सारी संतान। इश्माइल उसकी संतान था। सारा के मरने के बाद उसके 7 या 8 बालक हुए एक दूसरी स्त्री कतूरा से। लेकिन देखो, वो बीज जो एक प्रतिज्ञा किया हुआ था, जो कि इसहाक था, और इसहाक के द्वारा मसीह आया, और मसीह के द्वारा हम आए। प्रतिज्ञा बिना शर्त की है। अब अब्राहम के बारे में क्या? क्योंकि वो चला गया होता, उसके लिए फिर से कभी वापस आना असंभव था। निश्चय ही शाऊल के लिए फिर से कभी वापस आना असंभव था। यदि ऐसा है, तो आपको वचन को उस तरह से पढ़ना होगा। देखा, लेकिन ऐसा नहीं था। परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमेशा के लिए दृढ़ बनी रहती है। आइए यहाँ सिर्फ एक मिनट पढ़ें। मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें। मैं चाहता हूँ कि आप गलतियों 3:16 पर जाएं और इसे पढ़ें, और अब देखें कि प्रतिज्ञा क्या है, और देखें कि क्या हम उसकी प्रतिज्ञा हैं या नहीं। 3:16 यहाँ सुनना तो ठीक है, मैं 15वां पद भी पढ़ने जा रहा हूँ। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है, तो न कोई उसे टालता है और न उसमें कुछ बढ़ाता है। निदान अब्राहम और उसके बीज या सीड को बीज SEED उसके बीज के लिए प्रतिज्ञा की गई थी, अब्राहम और उसके बीज के लिए। अब देखो, वो ये नहीं कहता कि तेरे बीजों को, बहुवचन, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में, कि तेरे वंश को, और वो मसीह है। तब मसीही अब्राहम का बीज था, और हम मसीह में मरे हैं और उसके देह में बपतिस्मा लिया है। हम अब्राहम के बीज हैं और प्रतिज्ञा के वारिस हैं। फिर ऐसा किस तरह से है? आप भला कैसे कभी गिरेंगे? यदि परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा की है, आप भला कैसे कभी पीछे हट सकते हैं और दूर जा सकते हैं और इसके लिए नरक में जाना पड़े? अब आप कहते हो, अच्छा, क्या हम पीछे नहीं हट सकते? बिल्कुल, और जब आप पीछे हटते हैं, तो आप इसे प्राप्त करेंगे। आप चिंता न करें, अब्राहम ने इसे पा लिया और बाकी के लोगों ने पा लिया, और आप इसे पा लोगे। आप मत सोचना कि यह आपको पाप करने का अधिकार देता है। यह ऐसा नहीं करता है। आप जो कुछ भी करते हैं, उसके लिए आप भुगतान करेंगे। आप जो बोएंगे, वही काटेंगे। आप एक छोटा सा पाप करते हैं और आप पूरी बाल्टी भर के काटेंगे। यह सही बात है। लेकिन भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाश हो गए हैं। यह बिल्कुल सही है। अब्राहम ने बिल्कुल वही काटा जो उसने बोया था। यह सही बात है, लेकिन वो फिर भी बचा हुआ था। वो वाचा जो परमेश्वर ने इसराइल के साथ बांधी, उन्होंने उनके उत्तराधिकार को खो दिया, उन्होंने प्रतिज्ञा किए हुए देश को खो दिया और मिस्र में चले गए, लेकिन उन्होंने उनकी वाचा को नहीं खोया। परमेश्वर ने कहा, मुझे अब्राम से की गई अपनी प्रतिज्ञा याद है, मुझे याद है और मैं अपने लोगों को छुड़ाने नीचे उतर आया हूँ। मूसा वहाँ पर जाओ और फिर उनसे कहो कि मैंने कहा मेरे लोगों को जाने दो, मुझे याद है कि मैंने अब्राहम और उसके बीच से एक प्रतिज्ञा की थी। यही बात हमारे साथ भी है। सो यदि तुम मरे हुए हो और तुम्हारा जीवन मसीह में से होते हुए परमेश्वर में छिपा हुआ है, तो संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें छू सके। अब आप जाकर और गलत कर सकते हैं, लेकिन यदि आप वास्तव में सचमुच परमेश्वर की संतान हैं और आप देखते हैं कि आपने गलती की है, आप उठेंगे और फिर से कोशिश करेंगे, यह सही है, और आप वहीं पर पड़े नहीं रहेंगे। लेकिन यदि आप डरपोक हैं, यदि आप एक उठकंटारे हैं, यदि वहाँ कोई आपके लिए उठ जाओ नहीं है, आप कहेंगे आह ठीक है, वैसे भी इसमें कुछ भी नहीं था। परमेश्वर का राज्य उसके समान है जैसे कोई मनुष्य जाल को लेकर और समुद्र के पास गया और उसमें डाला। जब वो आया तो उसके पास कछुए, मेंढक, सांप, छिपकली, मकड़ियाँ और मछलियाँ थी। वही वो सुसमाचार है जब इसका प्रचार किया जाता है। जैसे प्रभु एक सेवक से कहेगा, जैसे भाई ग्राहम यहाँ उस ओर जाओ, इस कोने पर जाओ और कुछ समय मछली को पकड़ो, भाई ग्राहम तो ठीक है, वो अपने जाल को लेता है और वहाँ पर जाता है और जाल को फेंकना शुरू करता है। आप कहाँ जा रहे हो भाई बिल? मैं कहीं तो और जा रहा हूँ और इस कोने पर डालने जा रहा हूँ। मैं खींचता हूँ, वहाँ वे हैं प्रभु, आप जानते हैं कि वे क्या हैं। मैं फिर से जाल खींचता हूँ तो ठीक है, वे यहाँ हैं प्रभु। अब कछुआ तो एक कछुआ था शुरू से ही, तुम अभी जाल में फंसे हो, ये सही बात है। और इस तरह लोग भावनाओं में फंस जाते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। वे अभी जाल में फंस गए हैं, ऐसा ही है। यदि वो पुराना कछुए का आत्मा उनमें है तो ये ज्यादा समय नहीं रहेगा। वे कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ वो चला जाता है वापस रेंगता हुआ। और बूढ़ी स्त्री केकड़ी कहेगी, लेकिन मैं बस यह नहीं समझ सकती, देखा तुम्हारी स्पाइडर वहाँ थोड़ी देर बैठती है, वो चली जाती है, फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, सीधे वापस। खैर वैसे भी इसमें कुछ भी नहीं था। तुम्हारी सर्प कहेगी, ओह वो पवित्र शोर शराबा करने वालों का एक झुंड है, बस इसमें वहाँ बस इतना ही है, मैं वहाँ नीचे चली जाऊंगी जहाँ उन्हें इससे बेहतर समझ है, क्योंकि शुरू से ही तुम एक सर्प हो। सुसमाचार के जाल ने बस तुम्हें पकड़ा है, बस इतना ही है। लेकिन मछली को स्वामी की मेज पर ले जाया जाता है। वो आरंभ से ही एक मछली थी, उसका बीज एक मछली था, उसने एक मछली से ही आरंभ किया और परमेश्वर उसकी मछली को दुनिया की नींव डालने से लेकर जानता था। हालेलुया। याद रखें, वे सभी वहाँ उसी गंदे पानी में सांस ले रहे हैं, वे सभी उस एक ही नाले से सांस ले रहे हैं, ये सही बात है। हम सब ने उसी आत्मिक चट्टान में से पिया, जंगल में सबने मन्ना खाया, काले और यहोशू एक ही मन्ना को खाते हैं जो कि बाकी लोग खाते हैं, और वे सब जंगल में गिर गए, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए दो चुने हुए थे और वे चले गए, यह सही बात है। हम सब एक ही झरने से जल पीने के लिए बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं सब जो पीते हैं बच जाएंगे। हम सब मिलकर चिल्लाते हैं, हम सब एक साथ आनंदित होने के लिए बने हैं, लेकिन चुने हुओं को बचा लिया जाता है। क्या आपने ध्यान दिया, इसने कहा दो आत्माएं अंतिम दिनों में इतनी नजदीक होंगी कि यदि संभव हो तो यह बिल्कुल चुने हुओं को भी भरमा दे, यदि संभव हो तो। समझे, यही परमेश्वर की सच्ची आत्मा है जिसे अनंत जीवन के लिए चुना गया है। अब हम बंद कर रहे हैं, फिर भाई नेविल वहीं से आरंभ करेंगे जहाँ से मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, तो ठीक है। पर मैं ये कहता हूँ कि जो वाचा परमेश्वर ने मसीह में पहले से पक्की की थी, वो व्यवस्था 400 वर्ष की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल देती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। इससे पहले कि व्यवस्था कभी अस्तित्व में आती, यही वो प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी, क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है, न ही आप कुछ भी नहीं करने के द्वारा, न ही किसी भी व्यवस्था के द्वारा, आपके कलीसिया के किसी नियम से, कलीसिया में जुड़ने से, या न ही किसी अन्य नियम से, यह आपके लिए पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह का कार्य है, वहाँ आप हैं। देखना, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस बीज के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी। क्या यह बिल्कुल मेरे चेहरे पर नाक की तरह साधारण नहीं है? इसे दिया गया था सेवा करने के लिए जब तक कि बीज नहीं आ गया जो कि मसीह था जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, और वो दूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ में ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। अब मैं यहीं पर ठीक वहाँ शुरू से भाई नेविल के लिए छोड़ रहा हूँ इस आने वाले बुधवार के लिए। अब आप समझ गए जो हमने कहा है, यह फिर से जन्म पाए हुए मसीह के लिए पूरी तरह असंभव है कि मेरा अर्थ यह नहीं है अब वह खुद को फिर से जन्म पाया बुलाता हो। मेरा अर्थ एक सच्चे नया जन्म पाए हुए मसीह से है कि वो कभी भी अनुग्रह से गिरे, वह ऐसा नहीं कर सकता। वह गिर सकता है, ये सही है, लेकिन वो उस अनुग्रह से कभी भी बाहर नहीं जा सकता। अब्राहम अनुग्रह से गिर गया, निश्चय ही वो गिरा। परमेश्वर ने उससे कहा वही बने रहो, वो उसमें से बाहर आ गया, लेकिन उसने अपनी वाचा को कभी नहीं खोया। वो अब भी परमेश्वर का चुना हुआ था, वो वहाँ बैठा हुआ एक भविष्यवक्ता था, वो हमेशा ही था, वो हमेशा ही परमेश्वर का रहेगा। अब ध्यान दे, बाइबल ने कहा कि सारा इज़राइल बच जाएगा। ये कितने लोग जानते हैं? बाइबल ने कहा सब इज़राइली बच जाएंगे। अभी इज़राइल इज़राइल नहीं है जो कि शारीरिक तरह से है, लेकिन जो आत्मिक से इज़राइल है, क्योंकि दान और बुलावट बिना पश्चाताप के होते हैं। क्या बाइबल ने ऐसा ही कहा है? जो कि बिल्कुल अगला पद है, गलतियों का। ठीक है, सारा इज़राइल बच जाएगा, उनमें से हर एक बच जाता है। हम इज़राइली कैसे बनते हैं? मसीह में मरे हुए होने से। अब्राहम के बीज को लेते हैं और हम प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हैं। पौलुस ने कहा जो बाहरी तरह से हैं, वो यहूदी नहीं हैं, लेकिन जो भीतर से हैं, वो यहूदी हैं, प्रतिज्ञा किए हुए, और हम प्रतिज्ञा के द्वारा अब्राहम के बीज हैं। मसीह में से होते हुए उससे हमारा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हुए। ओह, मैं आशा करता हूँ कि आप इसे देखेंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझ जाएंगे, यदि आप इसके साथ थोड़ी देर तक बने रह सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसे समाप्त करेंगे, फिर हम मलकीसेदेक पर शुरू करेंगे जो इसमें फिर से वापस लाता है। हम सीधे शुरू करते हैं। ओह, यह बस सारी चीज अद्भुत है, लेकिन हम बस उन सर्वोत्तम चीज के अंदर जाते रहेंगे। अब देखो, यदि आपने इसे यहाँ से लिया तो ऐसा दिखाई देता है, यदि आप इसे केवल ध्यान देते हुए पढ़ सकते हैं, एक वास्तविक सख्त त्रिएकता की तरह जो विश्वास करता है कि तीन परमेश्वर हैं। एक बार मुझे बताया कि मती 3 ने पूरी तरह से घोषित किया कि वहाँ 3 हैं, परमेश्वरत्व में व्यक्तिगत 3 व्यक्ति हैं। मैंने कहा मुझे इसे देखना है। उसने कहा देखो, इस मंच के ठीक सामने खड़े होकर उसने कहा यहाँ पर देखो, मती 3 कहा जब यीशु सीधे जल में से बाहर आया, देखो आकाश उसके लिए खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को पिंडुक के समान देखा, और स्वर्ग से आवाज बोल रही थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। और 3 थे, पुत्र किनारे पर, बीच में पवित्र आत्मा, और वहाँ पिता ऊपर था। मैंने कहा भाई, वचन ऐसा नहीं कहता है। ओह हाँ, ये कहता है। मैंने कहा अब इसे फिर से पढ़ें, देखेंगे कि यह क्या कहता है। अब यहाँ उसकी तस्वीर है, यहाँ है परमेश्वर पुत्र, वहाँ परमेश्वर है वो पिता, यहाँ परमेश्वर है पवित्र आत्मा, एक पिंडुक की नाई। अब देखना, बाइबल ने कहा जब यीशु ने बपतिस्मा लिया था, पुत्र तुरंत ही जल में से बाहर आया, देखो उसके ऊपर आकाश खुल गया और एक आवाज बोल रही है, उसने परमेश्वर के आत्मा को देखा, परमेश्वर के आत्मा को पिंडुक की नाई। ना ही वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति था, लेकिन यह परमेश्वर का आत्मा, वो पिंडुक था जो उसके ऊपर था, और एक आवाज आती हुई बोल रही है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसके अंदर मैं वास करने से प्रसन्न हूँ। अब मती 3 पढ़ें और देखें कि क्या यह ऐसा नहीं कहता है? देखा, ना ही तीन लोग, बिल्कुल नहीं। और इसी तरह से ये ऐसा नहीं कहता है कि एक मनुष्य के लिए कभी भी वापस आना असंभव है, फिर जब वो पीछे हट जाता है। ये ऐसा नहीं कहता है, ये ऐसा नहीं कहता है। ये कहता है एक बार वहाँ होने के बाद एक मनुष्य के लिए खुद को नया बनाने के लिए वापस आना असंभव है, वो इसे नहीं कर सकता। बाइबल ने कहा वो जो परमेश्वर से जन्मा है पाप नहीं करता, क्योंकि वो पाप नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है और वो पाप नहीं कर सकता। मुझे एक भला पापी कैसे कहा जा सकता है जब मेरे स्थान को लेने के लिए वहाँ पर एक बलिदान मारा गया है? मैं कैसे मर सकता हूँ जब मेरे लिए मृत्यु का दाम चुकाया गया है? मैं कैसे मर सकता हूँ जब मुझे अनंत जीवन मिला है? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? आप इसे नहीं कर सकते। मेरे पास इस शहर के मेयर से लिखित अनुमति कैसे हो सकती है कि इस शहर के रास्तों पर से 60 मील प्रति घंटा गाड़ी दौड़ा सकता हूँ और कोई भी पुलिस वाला मुझे 60 मील प्रति घंटा दौड़ाने के लिए गिरफ्तार करे? आप इसे कैसे कर सकते हैं? मेरे पास मेयर से अनुमति पत्र है जो कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। वो मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसकी गिरफ्तारी वो सीटी बजा सकता है और बाकी की हर एक चीज कर सकता है, और मैं इसे बस अनदेखा कर सकता हूँ। इसका कोई मतलब नहीं है, मेरे पास अनुमति पत्र है। और तब भला मैं कैसे कर सकता हूँ जब मसीह मेरे लिए मर गया और मैं उसकी धार्मिकता बन गया उसके अनुग्रह और मेरे प्रति प्रेम दिखाने के कारण? मैं भला कैसे पाप कर सकता हूँ जबकि मेरे और परमेश्वर के बीच एक बलिदान को रखा गया है? मैं पाप नहीं कर सकता, इसे नहीं कर सकता। परमेश्वर मुझे कभी नहीं देखता, वो मसीह को देखता है। वो मेरे स्थान पर खड़ा है और जब मैं कुछ भी गलत करता हूँ तो मसीह मेरे स्थान को लेता है। मैंने अपने अंगीकार को किया है, मैं गलत हूँ, वो सही है। प्रभु, आप मेरे हृदय को जानते हैं, आप जानते हैं कि मेरा ऐसा मतलब है या नहीं, और मैं गलत हूँ, मुझे क्षमा करें। परमेश्वर इसे कभी नहीं देखता है। यीशु का लहू मुझे हर समय ढाके रहता है। फिर भला परमेश्वर मुझे कभी कैसे देख सकता है? भला मेरे लिए पाप को कैसे गिना जा सकता है जबकि वो ऐसा नहीं कर सकता? जैसे ही मैं इसे करता हूँ इसे क्षमा कर दिया जाता है। यह सही है। बस जैसे कि एक छोटी सी इस तरह की कुप्पी, एक छोटी सी आंख में दवाई डालने वाली कुप्पी या ड्रॉपर, और इसे काली स्याही से भरकर ब्लीच या सफेद चूने के एक बाल्टी के ऊपर पकड़े रहें और इसे उसमें डालें और फिर इसे फिर से ढूंढने की कोशिश करें। यह स्याही तब सफेदी में बदल जाती है, स्याही ब्लीच या सफेद बन जाती है। और यही है आपके अंगीकार किए गए पाप। यदि आप मसीह में हैं, आपके और परमेश्वर के बीच ब्लीच की एक भरी हुई बाल्टी है और आपके पाप धार्मिक बन जाते हैं क्योंकि वहाँ धार्मिक बलिदान आपके लिए प्रतीक्षा करता है।
There is one thought that cheers me and makes my heart glad. I won't have to cross Jordan alone.
यही एक अच्छी बात है, यही एक अच्छी बात है। मुझे इसे पार नहीं करना होगा। इन दिनों में से एक दिन हम मार्ग के अंत में आ रहे हैं। सूरज चमकने से इंकार कर देगा, तब परमेश्वर पुकारेगा। आदम पहुंचकर हवा को हिलाएगा और कहेगा, प्रिय यहाँ है ये जागने का समय है। हवा वहाँ पहुंचकर और हाबिल को पकड़ लेगी और कहती है, आगे बढ़ो प्रिय, ये जागने का समय है। हाबिल शेत को पकड़ेगा और शेत नूहा को पकड़ेगा। नूह पकड़, ओह आगे और आगे और आगे, अब्राहम के पास और आगे और आगे। जब वे आते हैं वहाँ एक बड़ा हिलाया जाना और जगाया जाना होगा। जब परमेश्वर का पुत्र आता है हम उस दिन उसकी समानता में खड़े होंगे। अब यदि आप यहाँ पर पाप करते हैं तो आप इसके लिए भुगतान करेंगे। मैंने बस मेरे मन में आ रहा है, मुझे अभी इसे बताना होगा। मैंने इसे चार या पांच बार दबाने की कोशिश की है, मुझे इसे कहना ही होगा। कितने लोग इस भाई पास्टर को याद करते हैं जो यहाँ परमेश्वर की कलीसिया में हुआ करते थे? भाई जो ठीक यहाँ पर था, उसका नाम क्या था? उसने वहाँ वोरगाग पर काम किया। ओह आप सब, पहली परमेश्वर की कलीसिया ठीक यहाँ कोने पर, या परेशानी के समय में रॉलिक दवाई की बिक्री किया करते थे, एक सच्चा ईश्वरीय संत मनुष्य था। भाई स्मिथ ने वहाँ पर उनके स्थान को लिया। मैं कुछ ही मिनटों में उनका नाम बताऊंगा। वो एक परमेश्वर के द्वारा बचाया गया मनुष्य था। याद रखें, यदि आप सुधार के लिए नहीं जाते हैं और आप एक मसीही होने पर कुछ गलत करते हैं, तो परमेश्वर आपको चेतावनी को देगा, और फिर यदि आप चेतावनी को नहीं लेते हैं तो वो आपको सीधे धरती पर से हटा देगा। यही है जो उसने किया। आपको बाइबल में याद है, उस कुरिन्थियों की कलीसिया को देखें, उसने उन्हें बताया कि उनका मसीह में क्या स्थान था, लेकिन उसने उन्हें चेतावनी दी कि क्या होने वाला है, और उन्होंने अपने आप को सुधारा, उन्होंने परमेश्वर के साथ ठीक कर लिया। और ये छोटा भाई, वो एक बहुत ही अच्छा छोटा भाई था। मैं विश्वास करता हूँ वो एक परमेश्वर के द्वारा बचाया गया मनुष्य था, और उसे या नीचे एक काम मिला वोरगांग में। यदि उसके कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं नहीं जानता क्या आप यहाँ बैठे हुए हैं या नहीं। लेकिन रैमसे, भाई रैमसे, कितने लोग याद है भाई रैमसे यहाँ चर्च ऑफ गॉड में थे? निश्चय ही आपको याद होगा। बहुत ही अच्छा छोटा सा मनुष्य, और वो अक्सर मेरे घर आता था और हम साथ में बातें करते थे, और हम वहीं बैठकर और एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोते। एक सच्चा मसीही। एक दिन मैं वहाँ नीचे गया, बस विदेश से एक सभा में आया, मेरी कार की जांच की थी। भाई रैमसे ने कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बिली? मैंने कहा, उसकी जांच करो भाई रैमसे, तेल को बदलें। ठीक है, उसने कहा, अच्छा ठीक है। कहा, क्या आपकी सभा अच्छी हुई? मैंने कहा, ओ भाई रैमसे, यह बहुत ही अद्भुत थी। मैंने कहा, काश आप कभी मेरे साथ चल पाते, आप मेरे साथ क्यों नहीं आते? उसने कहा, मैं अब और प्रभु की सेवा नहीं करता बिली। मैंने यहाँ वहाँ देखा, मैंने कहा, आपने क्या कहा? उसने बस यूं ही कहा, मैं अब और उसकी सेवा नहीं करता, दूर चला गया। मैंने सोचा, ओह, वो ऐसे ही आगे जा रहा है, मैं आगे चला गया, वो कहीं तो चला गया। मैं वापस आकर और अपनी कार में बैठ गया। मैं घर पर आया और मैं इसके बारे में सोचने लगा, मैं अब और प्रभु की सेवा नहीं करता। प्रभु ने मेरे मन में इस बात को डाला कि मैं वापस जाऊं और उससे फिर पूछूं। तो मैंने कहा, मेडा, जरा कोट को पकड़ना, और मैं अंदर जाकर और अपनी कार में बैठ गया और वापस वहाँ चला गया। फिर से रुक गया, वोरगांग में चला गया। मैंने कहा, भाई रामसे, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कहा, ठीक है बिल्ली, क्या प्रश्न है? मैंने कहा, आपने कुछ समय पहले कहा था आप अब प्रभु की सेवा नहीं करते हैं, आप बस मुझसे मजाक कर रहे थे, क्या आप नहीं कर रहे थे? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, भाई रामसे, आपका मतलब ऐसा नहीं था? उसने कहा, जी हाँ। मैंने कहा, क्या आप उससे प्रेम नहीं करते? उसने कहा, यदि मैं उससे प्रेम करता तो मैं उसकी सेवा करता, क्या मैं नहीं करता बिल्ली? दूर चला गया। मैंने सोचा, कहो भाई रैमसे। कहा, मैं इसके बारे में और बात नहीं करना चाहता। मैं घर गया, कमरे के अंदर गया, दरवाजे को बंद किया, और ओह, आप समझते होंगे कि आप वास्तव में कितना भारी महसूस करते हैं, जैसे आपने मीठे बिस्किट को किसी बच्चे या किसी से छीन लिया हो, आप जानते हैं। मैंने सोचा, क्या ऐसा नहीं हो सकता? निश्चित रूप से भाई रैमसे के साथ कुछ तो घटित हुआ है। और वहाँ एक छोटा अश्वेत लड़का था जिसका नाम जिमी है, वो यहाँ कलीसिया में आता है। उसका एक पैर है, आप जानते हैं, वो एक तरह से लंगड़ा है, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ। वहाँ वोरगांग में काम करता है, एक ध्वस्त करने के वाहन को चलाता है। वह मुझसे मिला और उसने कहा, आप जानते हैं आदरणीय बेरनम, उसने कहा, मैं यहाँ इस बारे में नहीं जानता जो डॉक्टर रैमसे यहाँ पर हैं। उसने कहा, मैंने एक दिन उनसे बताया, कहा, हम सब यहाँ तक इधर उधर मुंह खोलने से भी डर रहे थे। कहा, आप एक धर्मी व्यक्ति थे, लेकिन कहा, उसने अपने प्रचारक के लाइसेंस को लिया और टोकरी के पास गया और उसे फाड़ दिया और इसे टोकरी में फेंक दिया। कहा, मैं इसके साथ अब और कुछ लेना देना नहीं रखना चाहता। उसने कहा, हे महाशय, कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कहा, ओह जिम, मैं प्रभु की सेवा करते आ रहा हूँ। तो वो आगे चला गया। कहा, आपका ये मतलब नहीं है? और कहा, फिर उसने मुझसे बताया, कहा कि वो मजदूर दिवस पर अपने कार के दरवाजे को छेद कराने के लिए वहाँ आ रहा है। मैं सोचता हूँ कि ऐसा ही था। और उसने कहा, अब मैं चाहता हूँ कि तुम आकर मेरी सहायता करो जिम। उसने कहा, मैं कलीसिया से आने के बाद आपकी सहायता करूंगा, लेकिन पहले मैं कलीसिया जाऊंगा। कहकर वो वापस नीचे चला गया और श्रीमान रैमसे अपने कार के दरवाजे पर छेद करवा रहे थे। उसने कहा, जिमी, नदी की ओर जाना, यहाँ शराब खाने बंद हैं, नदी की ओर जाकर और मेरे लिए बियर का एक डब्बा ले आओ। उसने कहा, श्रीमान रिम से मैं बहुत सी बातों का दोषी रहा हूँ, लेकिन मैं प्रभु के सेवक के लिए बियर का एक डिब्बा लेने का दोषी कभी नहीं बनूंगा। उसने कहा, नहीं श्रीमान, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। और उसने कहा, खैर जाओ, इसे ले आओ जिम। उसने कहा, श्रीमान रिम से मैं आपके कार के दरवाजे को छेद करूंगा, लेकिन यदि आपको कोई बियर लेना है तो आप ऐसा खुद से कर लें। उसने कहा, मैं कभी भी प्रभु के सेवक के लिए ऐसी कोई भी चीज को नहीं लाऊंगा। तो रिम से जिमी की कार में जाकर बैठ गया, वहाँ कार को नदी के पास लेकर गया, आधा भरकर बियर के एक बक्से के साथ वापस आया, इसे पीने लगा। उसने नीचे की ओर जाना आरंभ किया और बीमार हो गया। देखा, परमेश्वर उससे बात नहीं कर सकता। मैंने उसे चेतावनी दी, मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। भाई स्मिथ उसके पास गए और उसे चेतावनी दी। सभी ने वो सब कुछ करने की कोशिश की जो वे उसके लिए कर सकते थे, फिर भी उसने बस उसके सिर को हिलाया। क्या हुआ? वो बीमार हो गया और मर गया। यह दिखाता है कि वो एक बचाया हुआ मनुष्य था। यदि परमेश्वर उसे नहीं, उसे आज्ञाकारिता में नहीं ला सकता, उसे धरती पर से उठाकर और उसे घर लाना होगा। ठीक ऐसा ही है जो बाइबल ने कहा, यही है जो बाइबल प्रतिज्ञा करती है। यदि आप सुधार नहीं करेंगे तो आपको घर पर आना होगा। इसलिए परमेश्वर आपको बचाने के बाद आपको खो नहीं सकता, लेकिन वो यहाँ आपके दिनों को कम कर सकता है और आपके द्वारा किए गए हर एक पाप के लिए आपको भुगतान करने को लगाएगा। इसलिए यदि आप पाप करते हैं तो आपने जो भी किया है उसके लिए आपको भुगतान करना होगा। बस इसे याद रखना। अब प्रभु आपके साथ रहे। आज रात मैं विश्वास करता हूँ कि भाई रेम से बचाया गया था। बिल्कुल, मैं इसे विश्वास करता हूँ, लेकिन वो बस परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं रहा, और जब उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो परमेश्वर को उसे घर लाना पड़ा। केवल यही वो बात है जिसे करना है। इसलिए ये क्या था? वो उस लहू के प्रति निंदा और अपमान को लाता जिसके द्वारा वो पवित्र किया गया था। यह सही है, और वाचा को अपवित्र वस्तु समझते हैं। क्या यह बिल्कुल ठीक वैसा ही नहीं है जो इस इब्रानी पत्री में कहा गया है? समझे, ये उसके लिए असंभव होगा कि नाश हो जाए, लेकिन वो लज्जा और अपमान को लाएगा। इसलिए परमेश्वर उसे धरती पर से उठाकर और घर ले जाता है। बिल्कुल ठीक इसी बात ने जगह ली थी। अब होने पाए प्रभु आशीष दे जब हम प्रार्थना के लिए बस कुछ क्षण के लिए अपने सिरों को झुकाते हैं। अब सबसे पवित्र और अनुग्रहकारी पिता, हम वास्तव में आपके उस प्रतिज्ञा के लिए आभारी हैं जो हमारे पास है कि आप हमें कभी न छोड़ेंगे और न कभी त्यागेंगे। आपने प्रतिज्ञा की है कि आप सारे जीवन भर हमारे साथ रहेंगे और मृत्यु में आप हमारे निकट होंगे। आपने हमसे प्रतिज्ञा की है कि हमारे पास अनंत जीवन है। आपने इसे हमें स्वतंत्र रूप से दिया। हम इसे कभी नहीं खो सकते। जो कोई मेरे पास आता है उसके पास अनंत जीवन है, और यदि यह अनंत जीवन है तो इसका कोई अंत नहीं है। और आपने हमें अंतिम दिन में जिला उठाने की प्रतिज्ञा की है। इसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं। हम आभारी हैं कि आपका वचन हमें यही सिखाता है। यह हमें एक निश्चित आशा को देता है। यह हमें बताता है कि हमारा पिता प्रेम है। वो हमसे प्रेम करता है और उसने हमें चुना है। आपने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना है, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने ऐसा किया है। और बहुत से लोग आज रात यहाँ बैठे हुए हैं और जिन्हें अनंत जीवन के लिए ठहराया गया है और यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, और आत्मा के फल उनके जीवन के पीछे पीछे जाते हैं, कोमलता, दीनता, नम्रता, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, भलाई। हम उनके लिए आभारी हैं, और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि यदि आज रात यहाँ कोई है जिनके पास वे फल उनके साथ साथ नहीं है, लेकिन वे किसी काल्पनिक पर विश्राम कर रहे हैं क्योंकि वे एक दिन उत्तेजित हुए, इसलिए वे भावुक हुए हैं, उन्होंने अच्छा महसूस किया। हो सकता है वे चिल्लाए हों, उन्होंने हो सकता है बहुत कुछ किया हो, लेकिन पिता यदि उनके पास आत्मा के फल नहीं है जो उन्हें दिन प्रतिदिन निरंतर प्रेम में बनाए रखता है, उनके शत्रुओं को क्षमा करते हुए, उनकी गलतियों को सुधारते हुए और शांतिपूर्व और प्रेम में जीवन व्यतीत करते हुए और एक दूसरे के प्रति मधुर और दयालु रहें और कलीसिया के लिए जोश हो, मसीह और उसके बच्चों के लिए प्रेम। हे अनंत परमेश्वर, उन्हें क्षमा कर। हालांकि वे कलीसिया के सदस्य होंगे, सांसारिक देह के सदस्य होंगे, होने पाए कि वे अब जाकर उन शारीरिक मरे हुए कार्यों को एक तरफ करें और सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। इसे प्रदान करें प्रभु, होने पाए वे उस एक सिद्ध के पास आएं और उनके पापों के प्राचित के रूप में उसे ग्रहण करें, जिससे कि एक दोषी पुरुष और एक दोषी स्त्री के लिए एक सिद्ध बलिदान के रूप में वो खड़ा हो सके और उन्हें उसके अनुग्रह के प्रेम और शांति के साथ प्रदान करें, जब तक वे परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ जाते, ताकि सदा के लिए जिए। इसे प्रदान करें पिता, जबकि हमने हमारे सिरों को झुकाया है। यदि वहाँ कोई एक ऐसा है जो व्यवस्था के शारीरिक जीवन को अदला बदली करना चाहेगा, बपतिस्मे का, संवेदनाओं या उत्तेजना का, इस तरह की छोटी छोटी शारीरिक बातों का, सच्चे प्रेम से भरे सच्चे हृदय के साथ, जिससे कि आप आपके सबसे कठोर शत्रु के पास चलकर जा सकें, उसके चारों ओर बाहें डालकर कह सकें, भाई मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आपसे प्रेम करता हूं। यदि आप उस प्रेम के सच्चे अनुभव के लिए शारीरिक चीजों के उस अनुभव को बदलना चाहते हैं, तो क्या आप परमेश्वर की ओर अपने हाथ को उठाएं और कहें, परमेश्वर मुझे आज रात ले लीजिए और मुझे वो बनाएं जो मुझे होना चाहिए, मैं ठीक यहाँ मंच से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। क्या आप प्रार्थना को चाहते हैं? अपने हाथ को उठाएं। परमेश्वर आपको वहाँ पीछे आशीष दे श्रीमान। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई। कोई और है? परमेश्वर आपको आशीष दे श्रीमान। मैं वर्षों से कलीसिया में रहा हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे श्रीमान। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई। परमेश्वर आपको वहाँ पीछे आशीष दे छोटी महिला। मैं परमेश्वर से मांगूंगा कि मुझे शांति पूर्वक बनाए। क्या आप सच में उग्र हो जाते हैं? क्या आप क्रम से बाहर हैं? क्या आप संदेह करते हैं? क्या आप डावाडोल होते हैं? क्या आप सोचते हैं कि ये वास्तव में सही है या नहीं? जब आप मसीह के पास आते हैं, तो क्या आप पूरे आश्वासन के साथ आते हैं, प्रेम से भरे हृदय से? क्या आप बिना किसी डर के उसके पास जाते हैं, ये कहते हुए मैं जानता हूँ कि वो मेरा पिता है और वहाँ कोई दोष नहीं है? आप मृत्यु से पार होकर जीवन में चले गए हैं, आप इसे जानते हैं और आप अपने जीवन की ओर ध्यान देते हैं। आप प्रेम कर रहे हैं, आप क्षमा कर रहे हैं, आप कोमल हैं, आप शांतपूर्व हैं, आप दीन हैं। आत्मा के ये सारे फल दिन प्रतिदिन आपके जीवन के साथ दिखाई देते हैं और जैसे ही आप कुछ गलत करते हैं, ओह प्रभु, जैसे ही आपके मन में आता है कि आपने गलत किया है, आप इसे तुरंत ही ठीक कर लें। ठीक तभी, एक मिनट भी और प्रतीक्षा न करें, जाकर ठीक तभी जाएं और इसे ठीक कर लें। यदि आप नहीं करते हैं, तो आपके पास मसीह की आत्मा नहीं है। आप एक अच्छी महिला हो सकती हैं, आप एक अच्छे पुरुष हो सकते हैं, कलीसिया में आपके बारे में अच्छे विचार हो सकते हैं, आपके प्रति पड़ोस में अच्छे विचार हो सकते हैं, लेकिन क्या आप उस सिद्धता की ओर बढ़े हैं, उस स्थान पर जहां आप पूरी तरह से मसीह पर भरोसा कर रहे हैं और इसके द्वारा आपको मोहर करता है? अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके निमित्त धर्मी गिना गया था। तब परमेश्वर उसे पुष्टि की नाई खतने की मोहर देता है। अब आप कहते हो, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैंने एक अंगीकार को किया है, लेकिन क्या परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा की मोहर दी है, आपके जीवन पर प्रेम की, आनंद, आत्मा के फल, यह साबित करने के लिए कि आप बचाए गए हैं? यदि उसने ऐसा नहीं किया है, तो उसने अभी तक आपके विश्वास के साथ पहचान नहीं दी है। आपने अब एक अंगीकार को किया है, उसने इसे स्वीकार नहीं किया है, वहाँ कुछ तो गलत है। तब क्या आप उसे ग्रहण करना चाहेंगे? हमारे प्रार्थना करने से पहले यदि कोई और है, तो अपना हाथ ऊपर उठाए। परमेश्वर आपको आशीष दे, नौजवान महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे, वहाँ पर पीछे पर परमेश्वर आपको आशीष दे, तो ठीक है। ठीक इससे पहले हम प्रार्थना करें, कोई और है? अच्छी बात है। परमेश्वर आपको आशीष दे, वहाँ पीछे बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे भाई, ये ठीक बात है। कोई 10-15 हाथ ऊपर उठे हैं। अब आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्य है, वे अपनी सीट पर एक वेदी का अनुभव कर रहे हैं, यह उनकी सीट पर है जहाँ वे अभी बैठे हुए हैं, कि आपने उनके हृदय से बात की है कि वे गलत हैं। उनकी सीटों पर ही आपने उनके हृदय में एक इच्छा को डाला है कि वे अधिक यीशु की तरह बनने के लिए लालसा रखते हैं। वे चाहते हैं कि उनका जीवन बदल जाए। वे दीन और नम्र बनना चाहते हैं। वे कोमल और धीरज से भरे रहना चाहते हैं। वे सहनशीलता धैर्य रखने वाले होना चाहते हैं। वे इतने मसीह जैसे, इतने मसीह समान बनना चाहते हैं, इतना तक कि संसार कहेगा जब वे सड़क पर जाते हैं, वो मनुष्य वास्तव में मसीही है, वो महिला वास्तव में मसीही है। ओह, वे सबसे कोमल, सबसे दीन, सबसे मधुर लोग हैं। इसे प्रदान करें प्रभु कि वे आज रात उस अनुभव को प्राप्त करें और होने पाए कि वे कभी भी उनकी कलीसिया की योग्यता पर, उनके किसी भी कलीसिया के साथ संबंध पर, किसी भी संप्रदाय पर विश्राम न करें, या न ही उनकी भावनाओं पर, किसी काल्पनिक पर, जैसे भावनात्मक रूप से कुछ तो ऐसा जो हुआ हो। हो सकता है कि वे चिल्लाए हों, अन्य जुबान में बोले हों, या कुछ और किया हो। हे अनंत परमेश्वर, वे उस बात पर स्वर्ग जाने के लिए भरोसा करने की कोशिश न करें, क्योंकि हमने इसे बहुत बार दयनीय तरह से असफल होते देखा है। और आपने कहा कि यह विफल हो जाएगा, चाहे अन्य जुबान हो, यह समाप्त हो जाएगा। जहां भविष्यवाणी हो, ये मिट जाएगी। जहां ज्ञान हो, यह मिट जाएगा। ओ, जहां ये सारी चीजें हो, यहां तक कि दान, चंगाई के अद्भुत कार्य हो, ये सब मिट जाएंगे। केवल वो दिव्य प्रेम बना रहेगा। परमेश्वर उनके हृदय में इसकी सृष्टि करें और वे जाने कि ये वो आत्मा है जो फलों को लाता है। इसे अभी करें प्रभु, जबकि हम आप पर रुके हुए हैं, क्योंकि हम इसे यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आग के गोले उड़ रहे हैं और पिंडों को इस इमारत में से होते हुए यहाँ से वहाँ जाते हुए देखना, मसीह को उसके हाथों में कांटों के साथ देखना और उसके, ओह, क्या आप जानते हैं कि यह मसीह विरोधी रूप रचना है। उसने कहा, जब ये बातें पूरी होने लगे तो ऊपर देखो, तुम्हारा छुटकारा निकट है। फिर यही कारण है कि मैं हर मिनट कलीसिया को जोर देना चाहता हूँ और आपको मजबूत बनाना चाहता हूँ। भाई नेविल हो सकता है हमेशा हमारे साथ ना हो। मेरा विश्वास है कि भाई नेविल एक अच्छे ठोस सुसमाचार के शिक्षक हैं। हम नहीं जानते कि इस पुलपिट में हवा किस ओर रुख लेगी, और जब ये यहाँ आती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को जानती हैं। उस वचन के साथ बने रहो। आप उस वचन को कभी मत छोड़ना। आप ठीक इसके साथ बने रहें। आप उस स्वतंत्रता में मजबूती से खड़े रहें, जहां मसीह ने आपको आजाद किया है। उन सारे जुओं के बंधनों और इत्यादि में मत उलझो। मजबूती से खड़े रहो और आजाद खड़े रहो। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हमें संसार में डरने की कोई बात नहीं है। आप हमेशा ही सोचते रहते हैं, मैंने लोगों को देखा है कि प्रार्थना करवाने आते हैं, वे पंक्ति में दुबक कर चलेंगे। अगली बार जब वे चंगाई के अभियान को देखेंगे तो वे इस पंक्ति में जाएंगे, वे इस पंक्ति में जाएंगे। मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराता। वे राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आप इसके विपरीत कर रहे हैं जिसे परमेश्वर ने नहीं करने के लिए कहा है। समझे, जब आप हिम्मत के साथ अनुग्रह के सिंहासन की ओर बढ़ते हैं और विश्वास करते हैं कि आपने जो मांगा आपको मिलेगा, इसके साथ बने रहें। इसी तरह से इसे किया गया है, न ही बस मिशन से मिशन तक धीरे धीरे दौड़ना, कलीसिया से कलीसिया तक, अभियान से अभियान तक। क्यों? उन्होंने इन चंगाई के अभियानों को व्यर्थ इकट्ठा होने के जैसे बना दिया है। निश्चित रूप से उन्होंने किया है। यह एक ऐसी जगह बन गई है जहां बुद्धिमान लोग वे यहां वहां देखते हैं और वे सोचने लगते हैं कि ये सब क्या है। वहाँ परमेश्वर उन चीजों को नहीं चाहता है। चंगाई को अभियानों में नहीं होना चाहिए। चंगाई तो हर स्थानीय कलीसिया में होनी चाहिए। ये सारे दान काम करते हुए, लेकिन उन दानों पर बीच के लिए न जाएं। दान पर कोई ध्यान न दें। यदि परमेश्वर आपको किसी चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो वो इसे करेगा, लेकिन दान देने वाले की ओर देखें। मार्टिन लूथर के एक बार अन्य जुबानों में बोलने के बाद उससे पूछा गया कि उसने इसका प्रचार क्यों नहीं किया। उसने कहा, यदि मैंने इस पर प्रचार किया तो मेरे लोग दान देने वाले के बदले दान के पीछे जाएंगे। ये सही बात है। मूडी एक बार बोलते हुए और आरंभ करता है, जब वो प्रेरणा के नीचे प्रचार कर रहा था तो उसने जुबानों में बात की। उसने कहा, परमेश्वर मुझे मूर्खता पूर्व शब्दों को बुदबुदाने के लिए क्षमा करे। निश्चित रूप से देखा, और उनके पास वो चीजें थी हम उन बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन उन्हें उनके स्थान पर रखा जाना चाहिए और उन्हें अवश्य ही प्रमाण के नाई पक्का नहीं किया जाना चाहिए। बाइबल में एक भी चीज नहीं बची है जैसे पवित्र आत्मा का प्रमाण, केवल आत्मा के फल। कोई ऐसे स्थान का पता लगाएं जहां यीशु ने ऐसा कहा था, जी हाँ श्रीमान, पवित्र आत्मा का प्रमाण आपकी आत्मा का फल है। यीशु ने ऐसा ही कहा, उनके फल से तुम उन्हें जानोगे। और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, भलाई, शांति, कोमलता, दीनता है। और शत्रु का फल बैर, घृणा, द्वेष, कलह और इत्यादि है। यही शत्रु का फल है। इसलिए आप इस बात से जांच सकते हैं कि आप किस तरह से जी रहे हैं, जहां आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं। यदि आपका सारा हृदय उसके प्रेम में है और आप उससे प्रेम करते हैं और कोमल हैं और उसके साथ प्रतिदिन जीते हो, आप जानते हैं कि आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। यदि ऐसा नहीं है और आप दूसरे प्रकार से हैं, तो आप केवल एक मसीही होने का ढोंग कर रहे हैं। ये सही बात है, जो सारा शारीरिक ढोंग करना निश्चित रूप से उजागर हो जाएगा, हम ये जानते हैं। सो उस तरह के जीवन को न जिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक विकल्प को क्यों स्वीकार करेंगे, जबकि ऊपर पूरा आसमान अच्छा और वास्तविकता से भरा है। निश्चित रूप से मुझे परमेश्वर को लेने दो, यही है जो मैं चाहता हूँ, आमीन। अब क्या कोई प्रार्थना करवाने आया था? यदि आपने करवाई है तो अपना हाथ उठाएं। आज सुबह हमारी चंगाई सभा थी, मुझे लगता है तब यहाँ यह महिला, तो ठीक है बहन, क्या तब आप आगे आएंगी और हमारे भाई प्राचीन अब अभिषेक के लिए आ जाएं? क्या वो अद्भुत नहीं है? आइए हम अब सिरों को झुकाते हैं, अब बहुत ही धीरे से, और मुझ पर चमके फिर से। अब आओ हर एक जन उस चमके, अब अपने प्राण में उसकी आराधना करें। देखो धीरे से गाते हुए, चंगाई सभा आ रही है, संदेश पूरा हुआ है, आइए आराधना करें।
Shine on me, oh shine on me, Lord, shine on me, let the light from the lighthouse shine. Like Jesus, to be like Jesus, on earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only ask to be like Him. We walk in the light, such a beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by night. Jesus, the light of the world,
of light proclaim. Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring. Jesus, the light of the
world. हमें स्वीकार करें प्रभु, जैसे हम आपकी आराधना करते हैं.
Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
क्या आप बस उस सांप करके निकालने को पसंद नहीं करते? क्या अच्छा महसूस करते हैं? अपने हाथ को उठाकर बताएं. उन पुराने समय के गीतों के बारे में कुछ तो है, पुराने समय के स्तुति गान. मैं इन सभी नए संसारिक गीतों और मसीह कलीसियाओं में डालने की बजाय बल्कि उन्हें लेना पसंद करूंगा. मैं ये पुराने समय को पसंद करता हूं, मुझे पसंद है. मैं बहुत आसानी से दुनिया से बाहर जा सकता हूँ जब इसे गाया जा रहा हो. क्या आप नहीं निकल सकते? कितना अद्भुत. क्या यह सब चुकता हो गया है? आप जानते हैं, मैं खुश हूँ कि मैंने यह सब चुकता कर दिया. क्या आप नहीं हैं? बहुत पहले पुराना हिसाब किताब सब चुकता हो गया है. मैंने उससे कहा, परमेश्वर, मैं वह नदी पर कोई परेशानी को नहीं चाहता. मैं अब सुनिश्चित होना चाहता हूँ. मैं उसे जानना चाहता हूँ. हम में से हर एक के सामने एक बड़ा गहरा गड्ढा है. हम उस ओर बढ़ रहे हैं. हर बार जब हमारा हृदय धड़कता है, हम नजदीक और नजदीक जा रहे हैं. लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मैं डरपोक की तरह छटपटाना नहीं चाहता. मैं अपने आप को उसकी धार्मिकता के वस्त्र में लपेटना चाहता हूँ, इसमें प्रवेश करूँ, यह जानते हुए कि मैं उसे उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जानता हूँ कि जब वो पुकारेगा तो मैं मरे हुओं में से बाहर निकल आऊंगा. मेरा विश्वास तेरी ओर देखता है. आइए हम इसे अब गाएं.
Great.
अब महान शिक्षक, जैसा कि आपने हमें अपने सबसे अद्भुत वचन में सिखाया है, हमारा हृदय बस व्याकुल है रैप्चर के अनुग्रह के साथ, यह जानकर कि हम मृत्यु से जीवन में पार कर चुके हैं। यह सब हमारे प्रभु यीशु की भलाई में से होते हुए हुआ है, जिसने हमें बुलाया और अपने लहू में हमें धोया है और हमें बिना गलती के निर्दोष परमेश्वर के सिंहासन के सामने उपस्थित किया है, क्योंकि उसने हमारे पापों को ले लिया। हमारा कोई पाप नहीं है। परमेश्वर ने हम सबके अधर्म को उस पर डाल दिया और वो हमारे अपराधों के लिए घायल हो गया। ओह, हम उससे कितना प्रेम करते हैं, वो परमेश्वर का महान मेमना। और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमें उच्चारण वचन को दें, जिससे कि हम दूसरों को बता सकें कि वे भी उसे जान सकें और उससे प्रेम करें, क्योंकि वो उनसे प्रेम रखता है। हमें यह अनुग्रह देना। और धन्यवाद पिता उन नवजात शिशुओं के लिए जो अभी अभी परमेश्वर के राज्य में आए हैं, होने पाए वे कहीं तो एक अच्छी कलीसिया भवन को पाएं, और जब तक मृत्यु उन्हें इस पुराने शरीर के दर्द और पीड़ा से मुक्त नहीं कर देती, तब तक आपकी सेवा करते रहें और उन्हें आने वाले युग में अनंत जीवन के साथ बिना गलती के दोष रहित उसके सामने उपस्थित करें, क्योंकि हम इसे उसके नाम में मांगते हैं। आमीन।